चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सेक जल पाय उपशाखा बाढ़ी जाए स्तब्ध है यह मूल शाखा बाढ़ीते न पाए निषिद्धाचार कुटि नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखा गण प्रथमे उपशाखार करये छेदन तबे मूल शाखा बाढ़ी जाए वृंदावन प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वाद लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए तहां से कल्प वृक्षे करे सेवन सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन इत परम फल परम पुरुषार्थ जारे आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ रिद्धा सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्म समाधि ब्रह्मानंद गुरुरपि चमत्कार यत्येवतावत् यावत् प्रेम्णा मधुरिपु वशीकार सिद्धौषधीनां गंधोऽप्यन्तः करणसरणिं पान्थतां न प्रयाति
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में दशाश्वमेध है घाट पर श्रीपद रूप गोस्वामी को समस्त वैदिक शास्त्रों का सार सुना रहे हैं। यही है प्रयोजन और अभिधेय और संबंध है। वेद में तीन बात लिखी गई है मुख्य रूप से संबंध अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का अर्थ है कृष्ण ही सब चीज के मूल हैं। कृष्ण को संबंध तत्व कहते हैं और अभिधेय क्या करना है जीव को 24 घंटे तो भक्ति को ही अभिधेय कहा गया है। करना है और लक्ष्य क्या है पाना है क्या उसे उसको प्रयोजन कहते हैं। प्रेम ही प्रयोजन कृष्ण है संबंध भक्ति अभिधेय और कृष्ण प्रेम भक्ति करके कृष्ण प्रेम पाना है तो कृष्ण प्रेम प्रयोजन हुआ। तो इसकी शिक्षा दे रहे हैं और मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार भक्ति की जाती है और भगवान के नित्य सिद्ध परिकरों में उनके प्रति कैसा कैसा भाव होता है उन भावों का प्रकाशन पोषण कैसे भक्ति की जाती है ये सामान्य हम जैसे भक्तों के लिए शिक्षा है और बाकी नित्य पार्षदों का भक्तों का जो भगवान के प्रति भाव है उसको भी विस्तार से श्रील रूप गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया तो उसी को यहां पर आज कहने का प्रयास किया जाएगा। अत्यंत गूढ़ विषय है और कोई कोई तो शब्द ऐसा होगा जो आदमी प्रथम बार सुनेगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए विभाव अनुभाव संचारी भाव व्यभिचारी भाव स्थायी भाव ये है क्या चीज पहले इसको आज केवल एक परिभाषा के रूप में कहने का प्रयास किया जाएगा, उसमें भी सब चीज मैं नहीं समझा हूं ठीक से, लेकिन जितनी जैसी समझ में आई है उसको कहने की चेष्टा करूंगा, और बाकी जो नहीं समझ में आएगा तो मैं कह दूंगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सावधानी से भक्तजन सुनेंगे, भगवान का खास अवतार हुआ इसी बात को बताने के लिए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति का क्या स्वरूप है, और इसको भगवान ने प्रचार करने के लिए रूप गोस्वामी को बनाया अपना स्वरूप अपने माध्यम। श्रील रूप गोस्वामी पाद नहीं बताया है भक्ति के बारे में, वास्तव में इतना सुंदर इतना सिस्टमेटिक ढंग से भक्ति के बारे में आज तक कहीं नहीं बताया गया था जो रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, तो उनको भगवान बता रहे हैं। तो यहां तक कथा आई थी कि भक्ति करने पर लोक में सम्मान होने लगता है, और कभी कभी कोई व्यक्ति भक्ति के नाम पर कपट, हिंसा या जीवों को दुख देना कई प्रकार से करता है, तो उसको उपशाखा कहा गया। उपशाखा का अर्थ है किसी वृक्ष के ऊपर या लता के ऊपर कोई आगंतुक लता लग जाती है, जिसको आकाश बंवर कहते हैं संस्कृत भोजपुरी में, आकाश बंवर। आपने देखा होगा किसी वृक्ष पर पीली पीली लता चढ़ जाती है अपने आप, नीचे से उसे कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसी लता बढ़ती है तो वृक्ष को ही स्तंभित कर देती है, समाप्त कर देती है। तो भक्ति करने पर कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य को, भक्त को अत्यधिक पूजा, लाभ, लाभ का अर्थ पैसे की प्राप्ति, और पूजा का मतलब है बहुत बड़ा सम्मान, प्रतिष्ठा, नाम बढ़ता है, और कुटी नाटी, कपट, हिंसा आदि, निषिद्धाचार, यहां तक कि जो वेदों में कर्म निषिद्ध किए गए हैं पाप, उसको भी करने लगता है। कई प्रकार देखा जाता है आज के संसार में, तो बहुत प्रसिद्ध बात है। तो इनसे बचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रथमे ही उपशाखर करय छेदन तबे मूल शाखा बाढ़ी जाए वृंदावन। बिल्कुल प्रारंभ में ही इन सब की कामना नहीं करनी चाहिए, हम भक्त हो गए हैं तो हमारा सम्मान हो या हम कुछ गलत कर सकते हैं, इन सब से बचना चाहिए। तो इसको कहते हैं छेदन, प्रथमे ही उपशाखर करय छेदन। बहुत ज्यादा शाखा बढ़ जाएगी उपशाखा, आकाश बावर यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हटाने से हटेगी नहीं, या वृक्ष को ही खत्म कर देगी। तो इसलिए प्रथम ही इन सब से बचना चाहिए। इसमें चैतन्य महाप्रभु कई उपशाखा का नाम ले रहे हैं। निषिद्धाचार, जो कर्म मना किया गया है उसको करना, कुटी नाटी, कपट, जीव हिंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा दी जत उपशाखा गण, ये सब उपशाखाएं हैं। तो प्रथमे ही उपशाखर करे छेदन तबे मूल शाखा बढ़ी जाए वृंदावन। जब उपशाखाओं का छेदन भक्त करता रहता है तो उसकी चित्तवृत्ति केवल केवल भगवान कृष्ण में जाती है, संसार के अन्य किसी भोग आदि में नहीं फंसती। तो जब वह लता, भक्ति लता बढ़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में आरोहण करती है तो वह फैलती है। आपने देखा होगा कोई लता अवलंबन पाकर के फैलती है और उसके बाद फल लगता है, तो श्री कृष्ण पर चढ़ेगी वो लता, श्री कृष्ण कल्प वृक्ष की जैसे उपमा दे रहे हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला आदि के अलावा भक्त की चित्तवृत्ति कहीं जा ही नहीं सकती, और वह भी वृंदावन में, वृंदावन में श्री कृष्ण का चिंतन, ब्रजवासियों के भाव के अनुसार कीर्तन या जप, हमेशा उस भाव में रहना। तो इसको कहते हैं कि वृंदावन में वो मूल लता जाएगी और कृष्ण चरण कल्प वृक्ष पर आरोहण, प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादय, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए, तो वहां प्रेम का फल लगता है उस लता में। जैसे इस समय भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते और एक दिन प्रेम उत्पन्न होता है, कहने का आशय ये है, तो प्रेम ही फल है। श्री कृष्ण के प्रति सहज स्नेह भाव यही फल है, तो प्रेम फल पाकी पड़े और उस लता में प्रेम का फल लगा और फल पक चुका है, तो माली आस्वाद है, उसका आस्वादन कौन करता है? माली। फल तोड़ेगा, खाएगा। भगवान के प्रति जब प्रेम बढ़ता है तो इस प्रेम में बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा आनंद है, उस आनंद में विभोर हो जाता है भक्त। और उसी लता के अवलंबन से, भक्ति के बल से माली कल्प वृक्ष पाए, जिस कल्प वृक्ष पर वो लता चढ़ी है अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनको पा जाता है उसी लता का अवलंबन लेकर, वो भी चढ़ते चढ़ते चढ़ जाते हैं, लता के अवलंबन से गोलोक पहुंच जाता है, मतलब भक्ति करते करते भगवान कृष्ण को पा जाता है। यही तो परम तहां से ही कल्प वृक्ष कराए सेवन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन, तो वहां जाकर को कल्प वृक्ष सेवा करता है, भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में भाग लेता है और कृष्ण के साथ प्रेम का जो व्यवहार है, जो फल है, उसी का आस्वादन करता है। यही तो परम फल, परम पुरुषार्थ, जारे आगे तीर्ण तुल्य चारी पुरुषार्थ, यह श्रीकृष्ण प्रेम ही परम फल है। यही तो परम फल, परम पुरुषार्थ, मनुष्य जो कुछ भी कमा सकता है, साधन कर सकता है, तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ उसका यही है, कृष्ण प्रेम बढ़ावे, और ये बढ़ेगा भक्ति करने से।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
यही तो परम फल है, भगवान कहते हैं कि यही है परम फल, सबसे श्रेष्ठ फल और परम पुरुषार्थ, और मनुष्य की सबसे बड़ी कमाई यही है। जार आगे तृण तुल्य चार पुरुषार्थ, इसके आगे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ गली में पड़े हुए तृण के समान, इसके आगे तृण के समान, धन की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति, इंद्रिय भोगों की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, ये सब पुरुषार्थ इस प्रेम के आगे तृण तुल्य, जारे आगे माने जिसके आगे, जिसके समक्ष तृण तुल्य चार पुरुषार्थ, तृण के समान। तृण कितना उपेक्षित है, कोई पूछता है? बल्कि दूसरों को बुलाकर कहते उसे बाहर करके फेंको, है ना? जिस प्रेम के आगे ये चारों पुरुषार्थ, स्वर्ग और मुक्ति, स्वर्ग का अर्थ स्वर्ग में जो भी स्त्रियां हैं, भोग हैं, अमृत है, दीर्घ जीवन है, ज्ञान है, ये सब इस प्रेम के आगे तृण के समान है, भुक्ति इसको कहते हैं, और मुक्ति ब्रह्मानंद भी। इस प्रकृति ऐसा कहा गया है उपनिषद में कि कोई व्यक्ति यदि ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु प्राप्त करे, लंबी आयु और पूर्ण स्वस्थ, कोई रोग नहीं है, और ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान है ही, पूर्ण ज्ञान है सब चीज का, पूर्ण स्वस्थ है, सारा सम्मान जगत का मिल रहा है, 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु प्राप्त किया, उसको जितना सुख प्राप्त होगा इस प्राकृत जगत में, उससे कोटि गुना सुख ब्रह्म में मिलता है। इस प्राकृत जगत के जो भी परफेक्ट भोग हैं, ब्रह्मा जी के आयु तक कोई भोगता रहे, तो वो जो सुख है ब्रह्मानंद के आगे कोटि गुणित हीन है, तुच्छ है, ब्रह्मानंद श्रेष्ठ है। लेकिन एक श्लोक कोट करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये भी रूप गोस्वामी पाद का ही बनाया हुआ है, बाद में इसको रखें, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, रिद्धा सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कारी वत्तावत जावत प्रेमणा मधुरिपो वशीकार सिद्धो सधीनाम गंधोप्यंतः करण सरणिम पांचताम न प्रयात। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये तो लौकिक आनंद तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग का इस पृथ्वी का, इस पृथ्वी पर तो कोई आनंद है ही नहीं, इसे सब कचड़ा है वास्तव में। जैसे कभी कभी कचड़ा फेंक दिया जाता है फिर भी वहां पर कौवे और कुत्ते जाकर के कुछ खाते हैं, तो इस संसार में कोई व्यक्ति आसक्त है इस पृथ्वी पर खास करके तो कचड़ा का आनंद है। ऐसे भी देखिए मनुष्य का शरीर मल मूत्र हड्डी पी आदि से भरा हुआ है, इसी को आदमी छू करके देह करके अपने को सुखी मानता है ना, जो तो कचड़ा ही तो है, कचड़ा से भी ज्यादा गर्हित है वास्तव में। कचड़ा में भी तो कोई कोई चीज अच्छी मिल जाती होगी, लेकिन ये तो यहां का जो सुख है इससे कोटि गुना सुख है स्वर्ग का। वो शरीर भी वो है प्राकृत, लेकिन फिर भी बहुत फाइन शरीर है, तेजोमय शरीर, वायुमय शरीर, आकाशमय शरीर, हम लोग जैसे मिट्टी का बना हुआ शरीर नहीं। तो फिर वहां का सुख है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशाल, भगवान कहते हैं कि स्वर्ग का सुख विशाल है सब माने में, क्वालिटी में और मात्रा में भी। तो वो जो सुख है वो भी कचड़ा है, पर इससे कोटि गुना सुख ब्रह्मानंद का है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रिद्धा सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि, ब्रह्मानंद सबसे श्रेष्ठ आनंद माना जाता है, भगवान के अंगों से निकली हुई ज्योति का आस्वादन करना वो बिल्कुल स्पिरिचुअल है और पूर्ण आनंदमय है। चूंकि आनंद घन भगवान के अंग की ज्योति है इसलिए वो आनंदमय है, तो और उसका साधन भी आनंदमय है। साधन क्या है उसको बता रहे हैं, रिद्धा ये समाधि की विशेषता है, समाधि चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं, चित्त पूर्ण एकाग्र है, ब्रह्म के अलावा कोई चिंतन नहीं कर रहा है तो इसको समाधि कहते हैं। कैसी समाधि, रिद्धा समाधि, परिपूर्ण समाधि है, संसार को पूरा पूरा भूल करके भगवान के उस ज्योति का कोई ध्यान कर रहा है, उसका अनुभव कर रहा है तो इसको रिद्धा सिद्धि कहते हैं, बढ़ी हुई संपूर्ण सिद्धि। रिद्धा समाधि कहते हैं, और सिद्धि ब्रज विजयिता, और सिद्धियों के समुदाय से जो समाधि और गाढ़ हो चुकी है, सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, सिद्धियों का समुदाय भी प्राप्त है, और सत्य धर्मा का यह अर्थ है, सच्चा साधन जो है सत्य धर्मा, जो समाधि चित्त की एकाग्रता ब्रह्मानंद को प्राप्त करने का सच्चा साधन है, तो सिद्धियों से युक्त है, सब प्रकार से परिपूर्ण है, वह साधन समाधि लगी हुई है, तो उस समाधि उस प्रकार की, और ब्रह्मानंद भी, ब्रह्मानंदो अपि गुरुरपि, ब्रह्मानंद महान ब्रह्मानंद भी, परिपूर्ण ब्रह्मानंद भी तभी तक किसी साधक के चित्त को आकृष्ट करता है, तभी तक किसी में कौतूहल पैदा करता है या अच्छा लगता है, जब तक मधुसूदन के प्रेम की एक प्रेम समुद्र की एक कणिका भी अंतःकरण में नहीं आ जाती है तभी तक ये ब्रह्मानंद चमत्कार पैदा करता है। जब ही भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का गंध लेश भी आ जाए भक्त के हृदय में तो ब्रह्मानंद पर थुत्कारता है, थूकता है, किसी काम का नहीं है, ब्रह्मानंद भी इतना तुच्छ हो जाता है फिर विषयानंद स्वर्ग आदि का क्या काम, ये कितने तुच्छ हो जाते हैं। ब्रह्मानंद भी तभी तक चमत्कार पैदा करता है, यह अच्छा चीज है ऐसे मन में भावना होती है, जब तक मधुरिपु के प्रेम की गंध हृदय में, हृदय को अपना पंथ नहीं बना लेती है, गंध भी पंथ नहीं बना लेती, पंथताम न प्रयाति, जब ही भगवान कृष्ण के प्रति थोड़ा सा आकर्षण पैदा हो जाए, वे पसंद लगने लगे तो उस प्रेम के आगे ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं, वो तुच्छ हो जाता है, फीका हो जाता है। और समाधि भी, जो ब्रह्मानंद प्राप्त करने का साधन है, वो समाधि भी फीकी लगने लगती है। और जैसे लौकिक विषय के विषय में, लौकिक विषयों के भोग के विषय में एक भक्त कहे हैं, जब से मेरा मन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मधुर मधुर रूप के चिंतन में फंसा है, तब से नारी संगम का की याद आने पर मेरे मुख में थूक भर जाता है, थू थू हो जाता है, ऐसा वे कहते हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि पहले वे एक स्त्री में आसक्त थे, राजा थे, कुलशेखर राजा थे, महान व्यक्ति थे। वो कहते हैं जब से कृष्ण की रूप माधुरी मेरे मन में आ गई है, तब तक नारी संगम का स्मरण आने पर मुझे मेरा मन डिस्गस्ट होता है, छुटकार आता है। और ब्रह्मानंद से किस प्रकार से भक्त लोग छूट गए, इसको बिल्कुल है समझ करके, ये तो बहुत से उदाहरण हैं भागवत में। जैसे सुखदेव गोस्वामी का, शुनकादिक ऋषि का, भगवान के चरण कमलों की गंध है नासिका में आई और उनका ब्रह्मानंद सब छूट गया। शुनकादिक, सुखदेव गोस्वामी कथा सुने भगवान की, वो सब कुछ दूसरा ध्यान से अनछूट गया। इसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, जा रहे आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। शुद्ध भक्ति हैते है प्रेमा उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्ति कहिए लक्षण। शुद्ध भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है। शुद्ध भक्ति का है अर्थ है निरपराध भक्ति। यदि अपराध से शून्य भक्ति करेंगे, जैसे नाम जप है, भागवत पढ़ना, सुनना, भगवान की सेवा करना, कई प्रकार की नवधा भक्ति है, फिर 64 प्रकार की भक्ति है, तो इसको कोई व्यक्ति शुद्ध तरीके से करता है, वैष्णव अपराध नामापराध आदि से बच करके, तो ऐसी भक्ति करने से प्रेम उत्पन्न होता है। अतः यहां मैं भगवान कहते हैं कि अतएव शुद्ध भक्ति कही लक्षण, शुद्ध भक्ति का लक्षण बता रहा हूं। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने की, श्रीकृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी लालसा न रहे भोगों की प्राप्ति या मुक्ति की वासना, अन्य अभिलाषिता शून्यं, ये कृष्णानुशीलनं का विशेषण है। कैसे कृष्ण का अनुशीलन करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, अन्य अभिलाषा से शून्य होकर। और ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म से अनावृत अनुशीलन। ज्ञान कर्म का क्या मतलब, ज्ञान का यहां अर्थ है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान। निर्भेद ब्रह्मानुसंधान का अर्थ है कि ब्रह्म के समान अपने को भी मनन करना, और ब्रह्म को और अपने को समझना कि हम प्राकृत नहीं है, देह से परे हैं, हम चिन्मय हैं, इसी को ज्ञान शब्द के द्वारा शास्त्रों में कहा गया। यहां ज्ञान का अर्थ भगवत अनुसंधान ज्ञान नहीं हुआ, जैसे श्रीमद् भागवतम में बहुत सी कथाएं दी गई हैं, भगवान का वर्णन किया गया है, तो भगवान का वर्णन, भगवान का चिंतन, उनके रूप का गुण का, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। लेकिन यह ज्ञान का अर्थ है परिभाषा दी गई निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, इसको ज्ञान कहते हैं। तो ऐसी भगवान की भक्ति जिसमें ये सब कचरा मन में ना आए, इससे ढका हुआ न हो अनुशीलन भक्ति। और कर्म, कर्म का अर्थ है यहां पर काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। काम्य कर्म का मतलब होता है हृदय में कुछ लालसा रह करके भोगों के लिए जो काम करते हैं, जैसे हम लोग रोज काम करते हैं इधर उधर, किसके लिए, परिवार चलाने के लिए या और कोई काम
कोई लक्ष्य पाने के लिए, तो उसको काम्य कर्म कहते हैं। कामना प्रेरित करे जिस कर्म को करने के लिए, काम भोग वासना, तो उसको काम्य कर्म कहते हैं। और कुछ कर्म है शास्त्रों में जिनको मना किया गया, उनको निषिद्ध कर्म कहते हैं। यह कर्म शब्द से यही तात्पर्य है, कभी कोई निषिद्ध कर्म न करे और काम्य कर्म भी न करे, काम्य कर्म से आवृत न होइए। कर्म से और ज्ञान से शून्य, और अन्य अभिलाषा से शून्य, अनुकूल भाव से कृष्ण के प्रति सौहार्द से, चाहे कृष्ण को सुख देने के लिए जो कृष्ण का अनुशीलन है, इसको उत्तमा भक्ति कहा गया है। कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुशीलन का अर्थ होता है अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। इंद्रियों का अर्थ है जैसे आंख से देखना, ये कृष्ण की सेवा हुई। आंख से देखना, श्रीमद् भागवत पढ़ना, और भी आंख से देख करके हम जो भी कृष्ण के विषय में करेंगे, तो इसको कृष्णानुशीलन कहा जाएगा। कान से सुनना, हाथ से सेवा करना, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, पैर से उनके धाम की यात्रा करना या भगवान के प्रचार में लगना पैर से, यह पैर के द्वारा अनुशीलन है। यहां तक कि पायु और उपस्थ है, जो दो इंद्रियां हैं नीचे, उनके द्वारा भी भगवान का अनुशीलन इस तरह से होता है कि ठीक तरह से मल मूत्र साफ करके शरीर को स्वस्थ रह करके उस शरीर को भगवान की सेवा में लगाया जाता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति सवेरे स्नान कर रहा है और उसका लक्ष्य ये है कि मैं जल्दी से जल्दी स्नान करूं, स्वस्थ रहूं और भगवान की सेवा करूं, तो स्नान करना भी भक्ति है, क्योंकि उसका प्रयोजन भक्ति में हो रहा है। तो स्नान करना या कोई काम करना है ऐसे, तो यह कर्म का अर्थ है भगवत सेवा पर कर्म नहीं है। जैसे कहा ज्ञान और कर्म से अनावृत भक्ति होनी चाहिए, तो यह कर्म का अर्थ ये नहीं है कि अब भगवान के लिए मंदिर बनाना, भगवान के लिए बगीचा लगाना, भगवान का प्रचार करना, पुस्तक छापना, पुस्तक बांटना और जो भी रथ यात्रा आदि निकालना, ये तो कर्म है, लेकिन यह भक्ति है। तो यहां जो कर्म से हीन अनुशीलन कहा गया है, तो ऐसे काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म से हीन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाकी भक्ति में तो कर्म है ही, उसको भगवान गीता में अकर्म कहे हैं। अकर्म कर्म बंधन नहीं लगता है, फल नहीं बनता है उसका, भगवान प्रसन्न होते हैं, बल्कि व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भक्ति में जितने भी कर्म हैं उनको गीता में अकर्म कहा गया। तो ज्ञान और कर्म से, काम कर्म आदि से हीन होकर के कृष्ण की भक्ति करना, ये लक्षण है उत्तम भक्ति का। अन्य वंशा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूल्य सर्वेन्द्रिय कृष्णानुशीलन ऐ शुद्ध भक्ति यहा होते प्रेमा है पंचरात्रे भागवते यही लक्षण कर। अन्य वंशा, उसी का अनुवाद कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, अन्य अभिलाषिता से अन्य वंशा, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण संतुष्टि विधान के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। और अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर, और न तो दूसरे की पूजा, दूसरे को सुप्रीम मान करके भगवान कृष्ण जैसा और कोई व्यक्ति पूजा करे तो यह अच्छा नहीं है। अन्य पूजा के हैं तात्पर्य कृष्ण जैसा अन्य किसी की पूजा न करे। कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर हैं, श्री भगवान हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी और के प्रति ऐसी ही भावना रखता है और उसकी पूजा भगवान जैसी करता है, तो वह एक प्रकार का अपराध कर रहा है, ये भगवान का तिरस्कार हुआ। तो अन्य वंशा और अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूल्य सर्वेन्द्रिय कृष्णानुशीलन, कृष्ण को देखना, कृष्ण की बात सुनना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के सुख के लिए संकल्प करना, विकल्प करना, मन से बुद्धि से प्लान करना, कैसे कृष्ण सुखी होंगे, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए काम करना, इसको कृष्ण अनुशीलन कहते हैं। यही है शुद्ध भक्ति और इसी से प्रेम उत्पन्न होता है। यही शुद्ध भक्ति, यह हैते प्रेमा है। पंचरात्र भागवत यही लक्षण कर नारद पंचरात्र में और श्रीमद् भागवतम में यही लक्षण दिए गए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कोट करते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये नारद पंचरात्र का वाक्य, समस्त उपाधियों से शून्य होकर के और श्रीकृष्ण का दास होकर निर्मलम मल रहित अन्य कामना शून्य, इंद्रियों के द्वारा जब हृषिकेश का इस तरह से सेवन होता है तो इसको भक्ति कहते हैं। बहुत बार इसकी व्याख्या की जा चुकी है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त उपाधियों से विनिर्मुक्त। उपाधि का क्या अर्थ है ये समझना चाहिए। नारद पंचरात्र में कहा गया सब उपाधि से मुक्त होकर के कृष्ण की भक्ति करे तो ये बहुत उत्तम भक्ति है। उपाधि का अर्थ होता है, पहली उपाधि तो देह है, उपाधि आधि, आधि का अर्थ होता है एक तो मनोव्यथा और दूसरा अर्थ होता है कौभर। उपाधि का अर्थ होता है एक फालतू कौभर आत्मा पर, फालतू कौभर। एक तो देह ही, हम देह नहीं है और इसीलिए जब देह नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, अहंकार नहीं है, इसलिए हम किसी परिवार के नहीं हैं, किसी समाज के नहीं हैं, न मनुष्य हैं और न तो ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, न तो सन्यासी हैं और न तो ब्रह्मचारी हैं, न गृहस्थ हैं, न तो वानप्रस्थी हैं। ये सब उपाधियां हैं। तो जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तत्परत्वे न, इस भाव से मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, इस भाव में प्रेरित होकर के करता है, इसको सर्वोपाधि विनिर्मुक्त कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इसलिए भक्ति करता है कि भाई मैं इस मंदिर में रहता हूं इसलिए कर्तव्य है करना, ये उपाधि हुई, ये स्वरूप नहीं हुआ, इसीलिए परेड की तरह क्या करे, ये नहीं आओ इसको करना है कि हम इस संस्था के हैं, हम इस मंदिर के हैं, हम इस परिवार के हैं, हम इसके हैं उसके हैं, इसलिए हमें 16 राउंड जॉब करना चाहिए। तो यह उपाधि से युक्त भजन हुआ। सर्वोपाधि निर्मुक्त, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में हम कृष्ण के हैं और कृष्ण की सेवा हमारा धर्म है, बस इस भाव से प्रेरित होकर के जो अनुशीलन किया जाता है इंद्रियों से, अभी इंद्रियों से, इंद्रियां बहुत हैं, जैसे मन सहित 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों से जब कृष्ण की भक्ति की जाती है इसको भक्ति कहते हैं, ये शुद्ध भक्ति है। इस संसार में व्यक्ति कर्म करता है कुछ भी, चाहे भक्ति करे और करे, लेकिन कुछ न कुछ प्रेरित होकर करता है कि मैं इसका हूं, उसका हूं, इसका हूं, इसलिए मुझे ये करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। ये सब उपाधियां हैं वास्तव में। जैसे और कर्म हैं, एक कर्म जैसे बता रहे, अमेरिका में 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो अमेरिका उस दिन स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई, तब हम अमेरिकन हैं इसलिए हम उसका आदर करेंगे, है ना। आज अमेरिका में जन्म लिए हैं तो हम 4 जुलाई को मनाएंगे, और वही कदाचित भारतवर्ष में जन्म लिए हैं तो 15 अगस्त मनाएंगे। ये उपाधि है कि हम भारत के हैं इसलिए हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ दिन है ना। लेकिन जीव वास्तव में न किसी देश का है, न किसी काल का है, न किसी व्यक्ति का है, वो तो घूम रहा है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान, भ्रमण कर रहा है। तो इन सब उपाधियों से शून्य होना चाहिए, मैं और कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु से जब श्रीपाद अद्वैताचार्य ने पूछा कि कोसी आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, तो वो आशा कर रहे थे कि ये कहेंगे कि अहम विष्णु या कृष्ण हूं, ये हूं वो हूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना हम विप्रो, ऐसे चालू यही है ना, ना हम विप्रो ना पिवैश्यो न शूद्रो, नच नरपति ना पिवैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी नच गृहपति नो बनस्थो जतिर्वा। वास्तविक चैतन्य महाप्रभु तो बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो ब्राह्मण थे है ना, लेकिन सबसे पहले कहते हैं ना हम विप्रो, मैं विप्र नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, वानप्रस्थ नहीं हूं और सन्यासी नहीं हूं। बाहर से तो देखा है तो ब्राह्मण भी थे और सन्यासी भी थे, तो आप हैं क्या? किंतु प्रोद्यत निखिल कैसे है वो श्लोक, पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासा अनुदास, जिनका सौंदर्य माधुर्य उच्छलित होता रहता है सर्वदा, जो सौंदर्य और माधुर्य के निधान है, ऐसे ऐसे गोपीनाथ के भगवान श्री कृष्ण के दासों का अनुदास है, मेरा यही परिचय, यही है वास्तविक सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। नहीं तो ये सोचना कि मैं सन्यासी हूं और सन्यासी हूं इसलिए हमें ये काम करना चाहिए, सन्यासी जीव है ही नहीं सन्यासी तो जीव नहीं है ना, ये तो केवल बाहरी एक उपाधि है, और कहा भी जाता है उपाधि दे दो उनको ये उपाधि, और सब भी जाति की उपाधि है, संस्था की उपाधि है, वर्णाश्रम धर्म की उपाधि है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सन्यासी है, गृहस्थ है। जीव गृहस्थ नहीं है और न तो सन्यासी है, न ब्रह्मचारी है, न वानप्रस्थी है, क्या? केवल गोपीनाथ के चरण कमलों के दासों का दास है, दासानुदास, ये भगवान परिचय दे रहे हैं। इस तरह से नारद पंचरत्न में कहा जा रहा है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम, अन्य हृषि के ना हृषि के सेवनम भक्ति रुचते, ये ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियों से इंद्रियाधिपति की सेवा करना, उन्हें सेवन करना, उनके संपर्क में आना, इसको भक्ति कहते हैं अनुकूल्य भाव से। तो मुख से जिह्वा से बोलना यह सेवा है भगवान की। सेवन का अर्थ है सब समय ये मेनियल सर्विस नहीं होता है, सेवनम, जैसे कभी कभी कहा जाता है कि इस दवा का सेवन करो, तो उस दवा के सेवन का मतलब ये नहीं है कि उसको पंखा झलो, अगरबत्ती दिखाओ, आरती करो, सेवन का ये अर्थ है उसको यूज करो, उसको लो। संस्कृत में सेवन का अर्थ है केवल सर्विस नहीं होता है, सेवन का अर्थ होता है प्रेम करना, भज सेवा, भजन करना, भजन का अर्थ होता है सेवा, और सेवन का अर्थ होता है अनुकूल भाव से संपर्क में आना। तो कोई व्यक्ति यदि कृष्ण का कीर्तन गा रहा है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सुख मिल रहा है, तो वो भगवान की सेवा कर रहा है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्ण करणामृत का यही अर्थ है, जो कृष्ण के कानों के लिए अमृत। कोई भक्त यदि कृष्ण का जप कर रहा है, आरती गा रहा है, तो आरती गाने वाला भी वैसी ही सेवा कर रहा है जैसे आरती करने वाला कर रहा है, दोनों में अंतर नहीं है। इसको सेवनम कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा सेवन, आंख के द्वारा सेवन, कान के द्वारा सेवन, जिह्वा के द्वारा सेवन, रसनेन्द्रिय के द्वारा सेवन। यदि कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद खा रहा है और मन में ये भावना है कि हमारे प्रभु का प्रसाद है, तो वो सेवन कर रहा है, भगवान कृष्ण का सेवन कर रहा है। या त्वग इंद्रिय से सेवन, किसी वैष्णव का चरण दबाना, या भगवान का चरण संवहन करना इत्यादि, ये सब सेवन है। आज के युग में सेवन का केवल यही अर्थ समझ लिया जाता है कि कुछ पैसा दो, चाहे कुछ करो शरीर से, लेकिन यह अर्थ नहीं है। वो भी एक अर्थ है, पाक्षिक अर्थ है, शरीर से ही करना है, इंद्रियों से ही करना है, लेकिन इंद्रियों में तो वाग इंद्रिय भी है, श्रवण इंद्रिय भी है, नेत्र इंद्रिय भी है, और मुख्य यही है। सबसे मुख्य है जिह्वा, तार मध्य जिह्वा अति लोह में सुदूर मति ताके गीता कठिन संसार, समस्त इंद्रियों में सबसे बलवान जिह्वा है, क्योंकि दो काम करती है, ये दो विभाग का मिनिस्टर है, बोलने का और खाने का, दोनों काम करती है, इसीलिए समस्त इंद्रियों से बलवान है और सारे इंद्रियों को यही शक्ति देती है, खा खा करके रस देती है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, तार मध्य जिह्वा अति लोहमय सुदूर मति ताकि जितना कठिन संसार है, इसको जीतना इस संसार में बड़ा कठिन है। जिह्वा को जीतने के लिए कृष्ण उपाय किए हैं, कृष्ण बड़ दयामय, करी बारे जिह्वा जय, जिह्वा पर विजय प्राप्त कराने के लिए कृष्ण बहुत दयालु हैं और उन्होंने अपना प्रसाद दिया। प्रसाद अन्न क्यों दिया कि जिह्वा पर जय प्राप्त किया जाए पहले, अंत संत जो खाना पीना है इधर, यह पराजय है जीव की, जिह्वा को पहले परास्त करना। तो से अन्न अमृत खा राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमेंडा का चैतन्य। तो इस प्रकार इंद्रियों से भगवान का सेवन करना, वाणी से उनका गुण गाना, गीत गाना, नाम जपना, भागवत पढ़ना, मंत्र जपना, ये वाणी से सेवन हुआ, और भगवान के अनुकूल बोलना, विचार करना, कान से भगवान के लीलाओं को सुनना, यह है इस इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा सेवन, और आंख से भगवान के रूप को देखना, और जिनके हृदय में भगवान है उन वैष्णवों को देखना, कहीं भी कुछ भी, इस आंख से भगवान की सेवा हो सकती है, और नासिका से उनके चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी की और माला के गंध को सूंघना, यह सेवन है। इसी तरह मस्तक से सेवन है, भगवान को प्रणाम करना, प्रणाम करना सारे शरीर के द्वारा, और संकल्प करना मन का एक काम है, संकल्प करना कि भगवान की ऐसी सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, भगवान की कथा करानी है, या भगवान का मंदिर बनाना है, या ये जो भी संकल्प कृष्ण के विषय में होता है वो मन के द्वारा सेवा है, और बुद्धि द्वारा भगवान की सेवा है कि विविध प्लान बनाना, बुद्धि से सोचना एक काम ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा। ये मन से केवल संकल्प होता है, बुद्धि से व्यवसाय होता है, व्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय, निर्णय, निर्णय करना, ये करना है, वो करना है, करना है, ऐसे करना है, सब में बुद्धि की जरूरत है। जैसे मान लीजिए रथ यात्रा निकालना है, तो रथ यात्रा में बुद्धि लगाना पड़ता है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे भक्तों को संगठित करना है, और ऐसे भगवान की सेवा के लिए धन संचय करना है, ऐसे प्रसाद बांटना, ये करना, वो करना है, कई प्रकार से अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि को लगा रहा है, सोच रहा है, तो ये बुद्धि के द्वारा वो भगवान की सेवा कर रहा है। और फिर भगवान के लिए धन लगाना और शरीर लगाना, वाणी लगाना, हमेशा अनुकूल बोलना, भाई कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण की भक्ति में लगे हुए लोग अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से प्रशंसा करता है तो वाणी से सेवा कर रहा है भगवान की, या जप कर रहा है, पाठ कर रहा है, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और अब श्रीमद् भागवतम से बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहा से मनोगति रविच्छिन्ना जथा गंगा मुसम बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिदायता अहैतुक्य प्रतिहता या भक्ति पुरुषोत्तम। मेरे गुणों को, मेरी दया गुण या सौंदर्य माधुर्य लीला, मेरे गुणों को सुनते ही किसी का मन यदि अबाधित गति से मेरे तरफ दौड़ने लगे, पसंद करे, केवल गुणों को सुनते ही, और उस तरह से मन की धारा हम में आने लगे जैसे गंगा जी समुद्र की तरफ जाती हैं, धारावाहिक रूप से जाती ही हैं हिमालय से निकल कर, तो इस प्रकार से जिस भक्त की चित्तवृत्ति मेरे गुणों को सुनते ही मेरे तरफ धावित होने लगे, यही है निर्गुण भक्ति योग का लक्षण। जो रजोगुण और तमोगुण से विद्ध नहीं है, शुद्ध भाव मेरे प्रति, और अहैतुक्य प्रतिहता सा भक्ति पुरुषोत्तम है। भगवान कपिल देव बोल रहे हैं, यह पुरुषोत्तम शब्द से अर्थ है भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान। भगवान कपिल देव भी भगवान है, लेकिन वे पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और मई शब्द का कहीं कहीं पर, यहां पर शब्द प्रयोग नहीं कर रहे। अहैतुक के प्रति हता या भक्ति पुरुषोत्तम है, लेकिन ऊपर कह दिए कि मद गुण श्रुति मात्रेण, तो अभेद करके बोल रहे हैं भगवान कृष्ण से अपना मेरे गुणों को सुनते हैं जिसकी चित्तवृत्ति गंगा जी की धारा की तरह मेरे तरफ में प्रवाहित होने लगती है और कहीं नहीं, तो यह है शुद्ध भक्ति का लक्षण, और अन्य कोई कामना नहीं रहती है, और भक्ति कभी खंडित नहीं होती है, अव्यवहिता है। यहां तक भगवान कहते हैं सालोक के शास्त्री सामिप्य सारूप कप्तम पिता दीय मानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जना, मेरी सेवा को छोड़ करके, मेरे प्रेम को छोड़कर, स्नेह को छोड़ करके, जो देने पर भी पांच प्रकार की मुक्ति नहीं लेते हैं, देने पर भी शास्त्री सालोक के शास्त्री सामित्व सारूप कत्व महत्वता, सालोक के मेरे जैसा लोक धनी और शास्त्री मेरे जैसा ऐश्वर्य, मेरे निकट रहना और मेरे जैसा रूप, और मुझसे एक हो जाना साइज मुक्ति। दीय मानम न गृहणंति बिना मत से वंदना, मैं देता हूं जबरदस्ती कि इतना भक्ति किए हो, इतना मेहनत किए हो, ये ले लो, हमारे जैसा लोक ले लो, वैकुंठ हमारे जैसा रूप ले लो, देने पर भी नहीं लेते हैं, कामना क्या करेंगे। भगवान कहते दीय मानम न गृहणंति, देने पर भी नहीं लेते। यदि भगवान जैसा लोक आज किसी को मिले, भगवान जैसा छोड़ दीजिए, एक साधारण धनी फ्लैट हो और सब हो, किसी को दिया जाए तो कहा हाँ ठीक है ले लेंगे, लेकिन चार प्रकार की, पांच प्रकार, पांचवी तो मुक्ति उसको तो भक्त लोग लेते ही नहीं है, लेकिन और चार प्रकार की जो भक्ति है, मुक्ति है, भगवान के समीप रहना, भगवान जैसा धन प्राप्त करना, रूप प्राप्त करना, लोक प्राप्त करना, उसकी भक्त कामना नहीं करते हैं। कामना क्या, भगवान देते हैं निहोरा करके, फिर भी नहीं लेते। चाहते क्या है, मत सेवनम, वो मेरी सेवा करना चाहते हैं, मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, मेरी सेवा को छोड़ करके वे चार प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते। हाँ, यदि मेरी सेवा वहां सुलभ है तो ठीक है, तो मूल चीज है सेवन, सेवा है, मेरे सेवा को छोड़कर कोई नहीं चाहते हैं, तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। भगवान इस जगत में अवतार लेकर रूप गोस्वामी के माध्यम से इस भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। सैव भक्ति योग से यात्यंतिक उदाहरता जनाति ब्रज त्रिगुण मत भावा योग उपकल्पते, यही है आत्यंतिक, यही है परम लाभ कहा गया है, आत्यंतिक सिद्धि इस प्रकार की शुद्ध भक्ति, जिस भक्ति योग से व्यक्ति इस त्रिगुणमय जगत को पार कर जाता है, कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है और मद भावाय उपकल्पते, मेरा प्रेम प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। भगवान जैसे चिन्मय सत्ता प्राप्त करता है, मदभाव का अर्थ है मेरा प्रेम, उसे मेरा प्रेम मिल जाता है। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है साधन करीले प्रेम उत्पन्न न है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि भोगों की लालसा रह गई और मुक्ति की वासना रह गई तो साधन करने पर भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। यह प्रायः भक्तों का प्रश्न रहता है कि हम इतना दिन से जप कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, पर फिर भी जैसे के तैसे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि भोगों की वासना बढ़ ही गई है। ऐसा कभी कभी भक्त कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते कहां कमी है, क्या माइनस पॉइंट है, क्या नहीं प्रेम उत्पन्न हो रहा है। भुक्ति मुक्ति आदि वांछन यदि मने है साधन करीले प्रेम उत्पन्न न है। कितना भी साधन करे आदमी, साधन मतलब यही जप कथा कीर्तन सब करे, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। कमी है कि भोग की वासना है अगर भक्त के मन में। ये दुनिया के लिए नहीं बात बताई जा रही है, भक्तों के लिए बताई जा रही है, क्योंकि साधन तो भक्त ही करेगा ना। तो भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है साधन करीले प्रेम उत्पन्न न है। भोग की वासना, मुक्ति की वासना, आदि शब्द से सम्मान पूजा आदि की वासना, ये आदि शब्द से ये समझना चाहिए। बहुत मन में वासना रहती है, चाहे आदमी भक्ति करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन मन वासनाओं से भरा हुआ है, अनेक इच्छाओं से भरा हुआ है। अतः भुक्ति मुक्ति की वासना से मुक्ति होनी चाहिए। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है साधन करी ले प्रेम उत्पन्न न। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्त सुख स्यात्र कथम अभिदय भवे। दो पिशाची हैं और हृदय हृदय में रहती हैं। भगवान के प्रति जो प्रेम है वह एक बच्चा के रूप में हल्का जन्म लेता है। दो पिशाची बैठी हैं जो जन्म लेते ही बच्चे को खा जाती पी जाती। भुक्ति पिशाची और मुक्ति पिशाची राक्षसी, भोगों की वासना यही है भुक्ति पिशाची और मुक्ति की वासना। जन्म मृत्यु से छूट जाए, कहीं चले जाए, वो भी तो केवल भागने की सोचता है कि संसार बंधन से छूट जाए। भगवान से कोई संपर्क नहीं करना चाहता, भगवान की पूजा करे, प्रेम करे, स्नेह करे, उसे कोई मतलब नहीं, केवल छूटना चाहता है। इसको मुक्ति वासना कहते हैं। और भुक्ति वासना, भोग तो अनेक प्रकार का है, स्वर्ग का भोग है, इस पृथ्वी का भोग है, अनेक प्रकार का भोग है। इसकी जो वासना है खाने की, पहनने की, अच्छी अच्छी सवारी करने की और स्पर्श की, स्त्री आदि की वासना, खाने पीने की, और बहुत बहुत वासना कि शरीर बिल्कुल अजर अमर हो जाए, पूर्ण स्वस्थ रहे, ये हो, ये सब भी भोग वासना ही। कोई बात नहीं, जैसा शरीर भगवान ने दिया बस इसी को कृष्ण की सेवा में अर्पित करना है। मान लीजिए कोई रोगी है तो सोचे कि नहीं अब पहलवान हो जाए तब सेवा करेंगे, ऐसा तो होने वाला है नहीं। जो भगवान ने वाणी दिया है, जो आंख दिया है, जो शरीर दिया है, इसी को उनकी सेवा में अर्पित करना है। तो ये वासना हो कि मैं मार्कंडे जी जैसा दीर्घायु प्राप्त करूं, या मैं ऐसे हो जाऊं, लोमस्ती हो जाऊं, या हिरण्यकश्यपु जैसा पूरा स्वर्ग को अपने अधिकार में कर लूं, ये हो जाऊं, या इतना बड़ा मिनिस्टर बन जाऊं, ये हो जाऊं, वो जैसा भुक्ति वासना है। तो जब तक भोग की लालसा है तो आदमी अब कितना भी जप करे, कुछ भी कथा सुने, कुछ भी करे, ये सब अंतर होने वाला नहीं है। मतलब प्रेम नहीं मिलेगा। तो उस तरह से कि जैसे किसी को कहा जाए ठीक है पेड़ प्राप्ति होगी, पेड़ पर चढ़ेगा झूलेगा, लेकिन फल नहीं मिलेगा। भक्ति किया जाता है भगवान का प्रेम पाने के लिए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, यही प्रयोजन है। तो साधन करेले प्रेम उत्पन्न न है, नहीं साधन करने पर तो प्रश्न ही नहीं है। जो साधन करते हैं उनका भी मन भगवान में नहीं रम पाएगा, न भक्ति मुक्ति किस भी है। साधन भक्ति हैते है रति रउदय, रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम कहे। तो ठीक तरह से निरपराध साधन जब व्यक्ति करता है तो उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होती है। रति का अर्थ अनुरक्ति, रत हो जाना, इस भाव को रति कहते हैं। रति जैसे संसार में लोग रत हैं, लगे हैं अपने अपने काम धंधा में, भोगों में, वैसे साधन करने पर, भगवान के नाम का कीर्तन करने पर, गीत गाने पर या श्रवण करने पर, मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन करने पर भगवान में रति उत्पन्न होती है। और रति जब गाढ़ अवस्था को प्राप्त होती है तो उसी को प्रेम कहा जाता है। वह अनुरक्ति इतना बढ़े कि बढ़ते बढ़ते गाढ़ हो जाए तो उसको प्रेम कहते हैं। साधन भक्ति करने पर, साधन भक्ति की परिभाषा श्रीपाद रूप गोस्वामी बाद में दिया है, कृति साध्या भवेत साध्य भावा साधना विदा। साधन भक्ति किसे कहते हैं? जो कृति साध्या, जो इंद्रियों से की जाती है। कृति का अर्थ है आकृति या कृति, इंद्रियों से जो भक्ति की जाती है उस भक्ति को साधन भक्ति कहते हैं। और साध्य भावा, साध्य भावा का मतलब है जो साध्य को प्राप्त कराती है भक्ति, लक्ष्य को प्राप्त कराती, प्रेम को प्राप्त कराती है। और जो इंद्रियों से भक्ति की जाती है कर्तव्य मान करके, उसको साधन भक्ति कहते हैं। ये 64 प्रकार से भगवान ने बताया है इस भक्ति का लक्ष्य। तो इस कोई साधन इस भक्ति को करता है तो उस सबसे पहले उसके मन में रति उत्पन्न होती है भगवान कृष्ण के प्रति। और रति जब और थोड़ा डेवलप होती है तो उसको प्रेम कहते हैं। लाए क्या लाए? मैं कहा कि वहां रखा हुआ है वो कागज। क्या सुने? सुने नहीं, मैं कुछ कागज लिखा था, पैड कहा ना, पैड रखा हुआ। मैं थोड़ा परिभाषा उसे देना चाहता हूं, रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखा हुआ। प्रेम वृद्धि कर्मे नाम, जो प्रेम बढ़ता है और गाढ़ होता है तो उसका नाम होता है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। इस तरह से प्रेम, तो पहले साधन भक्ति करने पर रति उत्पन्न होती है। रति जब गाढ़ अवस्था को प्राप्त होती है तो उसको प्रेम कहते हैं। और प्रेम जब बढ़ता है तो धीरे धीरे ये रूप धारण करता है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव। महाभाव तक तो कोई जा नहीं सकता है, वो तो केवल ब्रज गोपांगनाओं के चित्त में रहता है, गोपियों के हृदय में महाभाव उत्पन्न होता है। कोई साधन का विषय नहीं है महाभाव, केवल सात तक उत्पन्न किया जा सकता है। महाभाव तो केवल भगवान की प्रेयसियों में, और वो भी मथुरा द्वारका की प्रेयसियों में नहीं, ब्रज की प्रेयसियों में ही उदित होता है महाभाव, अन्यत्र नहीं होता है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद या भगवान चैतन्य महाप्रभु इसका लक्षण भी नहीं बताए, केवल इतना ही बताए हैं कि यह स्वसंवेद्य है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और केवल ब्रज देवियों के हृदय में ये भाव महाभाव रहता है, इतना ही बता रहे हैं। और सबकी परिभाषा है प्रेम, प्रेम किसे कहते हैं और रति किसे कहते हैं, और फिर स्नेह, मान, प्रणय और राग, अनुराग, भाव। अभी मैं इस चैतन्य चरितामृत से लिखा हूं, उसको आप कागज आ जाए तो उससे मैं पढ़ूंगा उसको। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। स्नेह का क्या अर्थ है, यहां श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उद्धृत करते हैं भक्ति रसायन सिंधु से। सांद्र चित्त द्रवम कुर्वन प्रेमा स्नेह इतिरियते क्षणिकस्या पिनेह स्या विश्लेषस्य सहिष्णुता। प्रेम जब बढ़ता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और उसका जब स्नेह नाम होता है, तो स्नेह की परिभाषा रूप गोस्वामी पाद जी लिखे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। ये सब बातें चैतन्य महाप्रभु उनको बता रहे हैं। सांद्र चित्त द्रवम कुर्वन, सांद्र चित्त को, स्निग्ध चित्त को जो द्रवित करता कर देता है, इस प्रेम को विद्वानों ने स्नेह कहा है। स्नेह का वैसे भी अर्थ होता है घी या तेल, संस्कृत में स्नेह का अर्थ ये होता है। तो सबसे पहले प्रेम की परिभाषा ले रहे हैं। सम्यक मश्रित स्वांत, ये रति शब्द है, आप पहले भाव शब्द लेते हैं। ये भाव जो पहले उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, प्रेम उत्पन्न होने से पहली अवस्था, और बाद में जो भाव महाभाव आया है वो बहुत दूसरे अर्थ में आया है। भाव किसे कहते हैं, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाग रुचभि चित्त माश्रणम कृदशव भाव उच्यते। प्रारंभ में जब श्री कृष्ण पसंद लगने लगते हैं, उनके प्रति जब प्रेम का उदय होने का होता है, प्रेम पूरा पूरा उदय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे सूरज के उगने से पहले उजाला हो जाता है, सूर्य अभी उगा नहीं है फिर भी सब जगह प्रकाश हो जाता है, तो इस प्रकार से प्रेम अभी हृदय में उदित होने वाला है, परंतु उसके पहले जो उसका प्रकाश फैल जाता है, इधर उधर उजाला छा जाता है, प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, प्रेम रूपी सूर्य के जो किरण स्थानीय है और जो चित्त को मसृण कर देता है। मसृण का अर्थ होता है क्या कह दे, मसृण का अर्थ होता है जैसे कोई सूखा चीज है और उसको गीला करे, कोई चीज गीला कर दे, तो चित्त को जब कृष्ण के स्मरण चिंतन श्रवण आदि से जो ऐसा भाव उत्पन्न होता है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है जो चित्त को बिल्कुल कोमल बना देता है। द्रवित तो स्नेह करता है, हाँ द्रवित ही समझिए, द्रवित होने के पूर्व की अवस्था, जो चित्त को कोमल बना देता है, स्निग्ध बना देता है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम से भरने लगता है, तो इस स्थिति को भाव कहा जाता है। रुचभि चित्त माश्रणम, जैसे सूर्यकांत मणि होती है, सूर्यकांत मणि होता है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वो पसीना छूटने लगता है उसको, उस पर पत्थर को, जिसको सूर्यकांत मणि कहते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही उसमें पसीना आने लगता है पत्थर, लेकिन उसमें पसीना आने लगता है। तो इस प्रकार कृष्ण की याद करके कब कृष्ण मिलेंगे और कृष्ण के सौहार्द भाव प्रेम का भाव जब चित्त बिल्कुल पिघलने लगे या मश्रित होने लगे तो इस भाव इस विचार को भाव कहा जाता है। अच्छा, ये जब डेवलप करता है तो फिर ये प्रेम का रूप धारण करता है। प्रेम किसे कहते हैं? जस्मात मश्रित स्वयं तो ममत्वाति स्वयंकित भाव सैव सान्द्रात्मा बुधय प्रेमा निगद्यते। जो भाव हृदय को बिल्कुल मश्रित कर देता है और जिसमें ममत्वातिशयान किंत और जो ममत्व से बहुत युक्त हो जाता है, कृष्ण मेरा है मेरा है मेरा है, कृष्ण मेरे हैं मेरे हैं, मैं कृष्ण कहूं, कृष्ण के प्रति ममता की अतिशयता जुड़ जाती है बहुत अधिक तरह से, कृष्ण के बिना नहीं रह सकता है, तो इस भाव को विद्वानों ने प्रेम कहा है। जो कृष्ण को सुखी करने की, कृष्ण की सेवा करने की, उनसे मिलने की लालसा हमेशा हृदय में प्रदीप्त हो जाती है। तो इसका स्वरूप है सांद्र आत्मा। सांद्र आत्मा, सांद्र आत्मा का अर्थ होता है जो सांद्र बादल कहते हैं, ऐसा बादल जिसमें जल भरा है, सूखा बादल नहीं, उसको सांद्र कहते हैं। ऐसा भाव, ऐसा हृदय जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भरा हुआ है, स्निग्ध है। जैसे कोई कठोर चीज है और अब वो सिक्त हो गया है, जिस भाव से हृदय सांद्रात्मक सांद्रात्मता को प्राप्त होता है तो उस भाव को प्रेम कहा गया है। और जो प्रेम जब और बढ़ता है तो वो स्नेह का रूप धारण करता है। तो स्नेह की परिभाषा बता रहे हैं, सांद्र चित्त द्रवम कुर्वन प्रेमा स्नेह इतिरियते क्षणिकस्यापि नेह स्यात् विश्लेषस्य सहिष्णुता। तो किसी कठोर चित्त को जो बिल्कुल कोमल कर दे उसको तो प्रेम कहते हैं, लेकिन जब वो चित्त को द्रवित करके बहाने लगता है, किधर बहाने लगता है, जैसे मान लीजिए कोई ऊंचे चीज, ऊंचे स्थान पर तेल है चाहे घी है, और घी को पिघला दिया गया और पिघल करके जैसे बहाने लगता है नीचे की तरफ, तो चित्त जब श्री कृष्ण के प्रति बहने लगता है एकदम द्रवीभूत होकर के, तो प्रेम की इस अवस्था को स्नेह कहा गया है। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि उस समय क्षणिकस्यापि विश्लेषस्य विश्लेषस्य सहिष्णुता न इहस्य, उस समय क्षण मात्र के लिए भी कृष्ण का वियोग सह नहीं सकता है भक्त, क्षण मात्र भी नहीं सह सकता। जैसे कोई पिघली हुई वस्तु नीचे की ओर बहती रहती है, ऐसे कृष्ण के तरफ ही चित्त बहने लगता है और कृष्ण का क्षण मात्र भी विश्लेष, यहां तक कि स्मरण अगर छूटा क्षण भर के लिए तो बेचैन हो जाता है, कृष्ण के साथ वियोग को क्षण भर के लिए भी सह नहीं सकता है। प्रेम की इस अवस्था को स्नेह कहा जाता है। प्राणय, इसके बाद मान, स्नेहस्तु हृष्टता व्याप्त है माधुर्यम मानय नमम बोधयत बोधयत या दाक्षिण्यम सब मानय इति कीर्तते। जब वह स्नेह हृष्टता से व्याप्त हो जाता है, वह स्नेह परिपूर्ण अवस्था में आता है और बहुत सुख का अनुभव होता है, उस प्रेम का आस्वादन करके, स्नेह का आस्वादन करके प्रियतम के प्रति बहुत सुख का आस्वादन होता है, बहुत सुखी जीव अनुभव करता है, तो कभी कभी वह स्नेह उसमें भंवर आने लगती है, क्योंकि यह प्रेम नदी है, उसमें भंवर आने लगती है, तरंगे उठती हैं। भंवर, भंवर और तरंग में अंतर है, भंवर समझते हैं ना, उर्मी भंवर चक्र बनता है, तो इस तरह से स्नेह की नदी में, स्नेह समुद्र में जब बाढ़ आती है, अतिशय विश्वास उत्पन्न होने लगता है मन में, तो प्रिय के प्रति कभी कभी अदक्षिण उत्पन्न होता है, वह प्रेम ही है। अदक्षिण का अर्थ है प्रतिकूल भाव, नहीं बोलना है, क्रोध आना है, इसको मान कहा गया है। वह मान भी प्रेम के कारण, प्रेम की वृद्धि के कारण हुआ है। स्नेह उत्पन्न हो जाता है जब चित्त द्रव बहने लगता है और प्रियतम से कभी वियोग को सह नहीं सकता है व्यक्ति, और इतना सुख मिलता है प्रियतम के प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में, तो उस प्रेम के कारण ही विश्रम्ब उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, और उस विश्वास के कारण वाम्य भाव उत्पन्न होता है, खास करके भगवान की प्रेयसियों में वाम्य भाव उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए राधा रानी को भगवान दिखा रहे हैं कि हे प्यारी देखो चंद्रमा उगा है और कितनी सुंदर रात है, चलो रास में पधारो, चंद्रमा की तरफ देख रहे हैं, और चंद्रमा को देख करके भगवान को राधा रानी के अंगों पर चंद्रमा है इसकी याद आने लगी, तुम्हारे नख में 10 चंद्र हैं, तुम्हारे पैर में 10 चंद्र हैं, नख चंद्र, तुम्हारा तिलक चंद्रमा जैसा लग रहा है, तुम्हारा मुख चंद्रमा जैसा है, चंद्रमुखी। एक बार भगवान ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, अवली का अर्थ होता है समूह है, हे श्री राधे तुम्हारे अंग में चंद्रमाओं का समूह है, एक चंद्रमा ललाट में है, मुख चंद्रमा है, ललाट आधा चंद्रमा है, हाथ में चंद्रमा, पैर में चंद्रमा, तो चंद्र समूह। भगवान ने अवली शब्द का प्रयोग नहीं किया, समूह शब्द का प्रयोग किया, प्रिय तुम्हारे अंगों में चंद्रमा का समूह है। तो राधा रानी तुरंत इसका मतलब तुमको चंद्रावली की याद आ रही है, कपटी कहीं के हमारे साथ हो और चंद्रावली की याद कर रहे हो, और चंद्र अवली चंद्र समूह है, इसी पर मान कर गई। ऐसा नहीं हुआ कि वो बोल कि सचमुच कोई बहुत भारी क्रोध है, ये है ऐसे, वो क्रोध रति उसको कहा गया है, वो रति ही प्रेम ही क्रोध का रूप धारण करता है, प्रेम क्रोध का रूप धारण करता है, उसको यहां पर बताए चैतन्य महाप्रभु, उसको क्रोध रति कहते हैं। कृष्ण पर क्रोध होना, उनको कठोर बोलना और करना और करना, प्रेम ही उस रूप में होकर के कर रहा है। तो जब प्रेम अतिशय गाढ़ होता है तो स्नेह का रूप धारण करता है, और स्नेह भी जब और अधिक हिष्ट होता है, बलवान होता है, तो मान का रूप धारण करता है, मान। और इस मान को मनाने में श्री कृष्ण को बहुत सुख मिलता है। यदि मान लीजिए एक बार कहें कि हे प्रिय राधे मुझे गलती हो गई, तुम हम पर कृपा करो, चलो रास में, और राधा रानी मान जाए, तो इसमें कोई सुख नहीं है, मतलब उतना डेवलप्ड सुख नहीं है। परंतु जब वो कहते हैं नहीं हमसे बात मत करो, ये बोलती ही नहीं है, कृष्ण की तरफ देखती ही नहीं है, और यहां तक प्रगाढ़ मान उत्पन्न होता है, इतना बड़ा क्रोध होता है कि कहते हैं जितनी भी काली वस्तुएं हैं सांवली उसको मेरे सामने मत होने दो, सारे तमाल वृक्षों पर चूना से लेप कर दो, और कोयल को पकड़ करके श्वेत रंग में रंग दो, मुझे कभी काजल मत किया करो मेरे आंख में, मैं सांवले चीज को देखना नहीं चाहती। इतना कृष्ण से घृणा हो गया, जुगुप्सा भक्ति रस भी है, जुगुप्सा रति इसको कहते हैं, घृणा, घृणा होने पर थू थू निकालना, छी छी, इतना कपटी व्यक्ति है ये, चंद्रावली के पास जाया गया और आकर के हमसे विनय कर रहा है, छी छी, तो दूर हो दूर हो। तो वह महाभाव ही इस तरह से जुगुप्सा का रूप धारण करता है, क्रोध का रूप धारण करता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु यहां बता रहे हैं कि स्नेह ही प्रगाढ़ होने पर, अतिशय सुख का अनुभव करने पर प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति मान का रूप धारण करता है। और इसके बाद होता है उत्पन्न प्राणाय, प्राणाय मानो दधानो विश्रम्भ प्रणय प्रोच्यते बुधाई, मान के बाद है प्रणय। मान धारण किए हुए ही जो प्रियतम के प्रति पूर्ण विश्वास होता है कि ये हमको मनाएंगे, हमसे प्रेम करते हैं, है मान, लेकिन फिर भी उन पर पूर्ण विश्वास होता है, प्रेम रहता है, तो उसको प्रणय कहते हैं। प्रणय और मान में थोड़ा सा अंतर हो, मान के साथ ही जो प्रेम रहता है उसको प्रणय कहते हैं। विश्वास, सहज विश्वास, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई गोपी अगर राधा रानी कृष्ण से बोलना छोड़ दी तब सदा के लिए बस तलाक हो गया, ऐसी बात नहीं है। जगत का यह हीन है, क्षणिक प्रेम नहीं, मान में भी प्रियतम के प्रति पूर्ण विश्वास बना रहता है, विश्वास रहता है कि हमसे प्रेम करते हैं और करेंगे, तो मान गर्भित प्रेम को प्रणय कहते हैं। राग, जब यह प्रेम और बढ़ता है, प्रेम ही स्नेह बना, स्नेह के बाद मान, मान के बाद प्रणय, प्रणय के बाद राग, तो राग किसे कहते हैं? दुखम अत्यधिकम चित्ते सुखवत्व नैव कल्पते सुखत्व नैव कव्यज्यते जतस्तु प्रणयोत्कर्षात् सो राग इति कीर्त्यते। भक्ति रसायन सिंधु में ये कहा गया है, अत्यधिक दुख होने पर भी भगवान कृष्ण के प्रेम में बहुत दुख हो रहा है, जैसे लोक लांछन हो रहा है, कई प्रकार का दुख, चाहे धन हानि का, स्वजन हानि का, अपमान का, किसी भी प्रकार का दुख हो रहा है कृष्ण के भक्ति में, प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में अवश्य दुख हो रहा है, लेकिन उस वो दुख ही चित्त में जब सुख जैसा प्रतीत हो, सुख जैसा प्रतीत हो, दुख है वास्तव में लेकिन उस वो कृष्ण के प्रेम में वही सुख का जैसा लगता है, अवश्य घोर दुख भी जब सुख जैसा लगे, तो इस भाव को, इस प्रणय उत्कर्ष को विद्वान लोग राग कहते हैं, निराग। जैसे एक बार भक्ति रसायन सिंधु में श्री प्रभुरूप गोस्वामी ने उदाहरण दिया है कि एक बार श्री राधा रानी गर्मी के दिन में गोवर्धन पर्वत पर चढ़ी थी और पत्थर बिल्कुल गर्म हो गया था। ये भगवान की लीला के लिए आवश्यक जी राज्य कभी गर्म नहीं होते हैं न बहुत ठंडा होते हैं, लेकिन भगवान के लीला के उत्कर्ष की सिद्धि के लिए बात है कि गिरिराज जी की शिला बिल्कुल तप्त हो गई थी और श्री राधा रानी ब्रज से, गांव से आई थी प्रियतम श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए, तो वो देखी गोवर्धन पर एक दूसरी जगह पर श्याम सुंदर खड़े हैं, तो उनको देखने लगी एक टक और इतना शिला गर्म थी कि पैर में फफोला पड़ने की नौबत थी, लेकिन कोई भी अनुसंधान नहीं है दुख का, पैर जलने का एकदम भान नहीं है, बल्कि उसी को वे परम सुख जैसा अनुभव कर रहे थे श्री कृष्ण को देख करके। तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतना बड़ा दुख है फिर भी उसको सुख जैसा मान रहे थे, तो भक्त के इस प्रेम को राग कहा जाता है। राग में दुख भी सुख जैसा प्रतीत होता है। एक और रूप गोस्वामी पाद ने उदाहरण दिया है कि एक गोपी भादो के चौथ के चंद्रमा को देख रही है, उसको देखने पर कलंक लगता है, नहीं देखा जाता है, सुने हैं ना इस बात को, कलंक लगेगा लगता है तो कोई नहीं देखता है, पर वह गोपी जो चाहती है कि कलंक लगे, इस तरह का प्रचार हो कि ये गोपी कृष्ण में फंसी है और कृष्ण इससे प्रेम करते हैं, दुनिया में बदनामी फैले तो बदनामी फैलेगी तो हो सकता है कि एक दिन कृष्ण के साथ हमारा विवाह भी हो जाए, तो हमको कलंक लगे इसके लिए वो चंद्रमा की पूजा कर रही थी, जल लेकर के अर्घ दे रही थी चंद्रमा को और कहती थी हे तारा भी पते, हे ताराओं के पति, हे चंद्रमा, आपको मैं नमस्कार करती हूं, मैं आपको जल दे रही हूं, आपको नमस्कार करके मैं आपसे वर मांगती हूं कि मुझ पर यह कलंक लगे इस ब्रज में, यह स्त्री कृष्ण में आसक्त हो गई है, ये लड़की कृष्ण में आसक्त, हमको ये कलंक लगे, जिनको विवाहिता स्त्री थी, विवाहिता लड़की किशोर अवस्था की, और वो इस चंद्रमा से मांग रही है, तो उसको समाज में जो कलंक लगेगा, उसकी बदनामी होगी, उसको भी वो महान सुख के रूप में देख रही है, महान आनंद के रूप में देख रही है कि हमारी बदनामी हो। तो कृष्ण प्रेम में प्रणय उत्कर्ष के कारण, प्रेमाधिक्य के कारण जब दुख भी सुख जैसा प्रतीत हो, तो इस प्रेम के स्थिति को राग कहा जाता है। ये रूप गोस्वामी पाद जी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति रसामृत सिंधु में सब लिखा है। और राग के बाद फिर अनुराग, तो अनुराग का डेफिनेशन करते हैं, सदानुभूतम अपि यह कुर्या नव नवम प्रियम रागो अभवन नव नव सोनुराग इति रियते। राग के बाद अनुराग, ये प्रेम और गाढ़ होता जा रहा है और गाढ़ होता जा रहा है। तो अनुराग का अर्थ करते हैं सदा अनुभूतम अपि प्रियम, सब समय श्री कृष्ण का अनुभव हुआ है, श्री कृष्ण से मिलन हुआ है, श्री कृष्ण से आलिंगन, श्री कृष्ण से लीलाएं, सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है, सदा अनुभूति के विषय है। फिर भी जो प्रेम जो भाव श्री कृष्ण को नया नया बना दे, देखने पर ऐसा ही लगे कि प्रथम बार देख रही हूं या देख रहा हूं प्रथम बार, हमेशा नव नवायमान प्रिय को करे, जिस भाव से प्रियतम श्याम सुंदर हमेशा नवीन दिख पड़े, हमेशा नया नया और नई नई अभिलाषा, नया नया मनोरथ, नया नया भाव उत्पन्न होता रहे, इस प्रेम की स्थिति को अनुराग कहा जाता है। राग और अनुराग में ये थोड़ा शांत है। तो राग प्रणय मान आदि तो उसमें रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ तो प्रेम बढ़ करके अनुराग दशा को प्राप्त होता है। सदानुभूतम अपि यह कुरिया नव नवम प्रियम रागो अभुवन नव नव सोनुराग इतिरियते। इसके विषय में भी श्री पद रूप गोस्वामी ने अनेक उदाहरण दिया है। राधा रानी श्री कृष्ण को कभी देखती हैं, यद्यपि पहले बार बार देख चुकी हैं, लेकिन ऐसा कहती है कि अरे सखी, आज मैं जमुना के तट पर एक सांवले लड़के को देखी, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, उसको कभी नहीं देखी थी। इस तरह के भाव होते हैं। ये उसी कृष्ण को सपना में देखें, फिर बंसी ध्वनि सुनी और पथ में देखी, चित्र देखी, नया नया रहता है, उसी श्याम सुंदर का चित्र देखी है तो उसमें मन अटक गया, और सपना में देखी उसमें मन अटक गया, और प्रत्यक्ष देखा अपन घर पर उसे मन अटक गया। तो ललिता जी से कहते हैं कि सखी इसे तो मरना ठीक है, मेरा मन तीन पुरुषों में जा रहा है, वैसे तीनों ये कहीं हैं, तीन नहीं है, लेकिन धिक्कार है मेरे मन को कि तीन पुरुषों में मेरा मन जा रहा है। सपना में देखी उसमें भी चला गया, चित्र देखी उसमें भी गया, और पनघट पर दिखाई दिया उसमें भी मेरा मन चला गया, धिक्कार है मुझको, मेरा जीवन बेकार है, मैं इस तरह से गिरी हुई हूं। तो उनको नया नया वो दिख रहे थे, और सपना में देखे वो भिन्न दिख रहे थे, और सामने देखी वो देखी, सब में मन अटक गया। तो इस तरह प्रियतम श्याम सुंदर इस भाव के कारण, इस अनुराग के कारण, प्रेम की इस दशा के कारण नित्य नया, नित्य आकर्षक, नित्य प्रिय लगते जाते हैं। सदा अनुभूतम अपि, सदा अनुभव है, संग है, साक्षात्कार है, फिर भी जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तृपित भेल। ये विद्यापति ठाकुर जी लिखते हैं, राधा रानी कहते हैं कि सखी मैं जन्म तक शुरू से ही मैं प्रियतम श्याम सुंदर को देख रही हूं, लेकिन मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए, और देखने की लालसा होती है। यदि अब जन्म होगा इस ब्रज में तो मैं विधाता से यही प्रार्थना करूंगी कि आप हमारे शरीर में कोटि कोटि आंख दीजिए, और सभी आंख निष्पलक दीजिए, पलक न गिरे, तब मैं श्याम सुंदर को देख पाऊंगी ठीक से। तो देखने की लालसा बढ़ती रहती है, हमेशा कृष्ण नए लगते हैं अनुराग में। इसके बाद है भाव, प्रेम की परिपक्व अवस्था और बढ़ती जा रही है, इसको भाव कहते हैं। पहले भाव दूसरा था समान, ये अनुराग के बाद भाव, अनुरागम स्वसंवेद्य दशम प्राप्य प्रकाशित जावद आश्रय वृत्ति स्थित भाव इत्यादि धीयते। तो इतना ही रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अब अनुराग जब स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त होता है, स्वसंवेद्य मतलब जिस भक्त के हृदय में भाव उत्पन्न होता है, अब वही इसको जानता है उसके विषय में अब क्या कहा जाए, और ये आश्रय वृत्ति को ग्रहण करता है। आश्रय वृत्ति का मतलब है भक्त, भक्त के हृदय में ही ये होता है। आश्रय वृत्ति का अर्थ ज्यादा है, ये अर्थ है कि जिसके हृदय में, जिस भक्त के हृदय में ये प्रेम उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, बस आश्रय वृत्ति तक ही रहता है, बाहर है कोई जान नहीं पाएगा उसको, ये अर्थ है आश्रय वृत्ति चेत भवे। तो प्रेम की इस गाढ़तम अवस्था को भाव कहा जाता है, अनुराग जब और बढ़ता है। और महाभाव की परिभाषा दे रहे हैं, मुकुंद महिषी वृंदे अपि असौ अति दुर्लभ ब्रज देवैक संवेदो महाभावत उच्यते। यही कह रहे हैं कि भगवान मुकुंद के, कृष्ण के, महिषियों के द्वारा भी जो असंवेद्य है वो नहीं जानती है इस भाव, महाभाव को, केवल ब्रज देवैक संवेद्य, ब्रज देवियों के द्वारा ही यह आस्वादनीय है, प्रेम के इस परिपूर्णतम अवस्था को महाभाव कहा जाता है। ये मथुरा और द्वारका पूरी द्वय की भगवान की प्रेयसियों के लिए भी ये दुर्लभ है, फिर अन्य भक्तों के लिए तो कहना ही क्या। भगवान की अपनी अर्धांगिनी रुक्मिणी जी आदि पटरानियों के लिए भी ये दुर्लभ है ऐसा भाव, जो भाव केवल ब्रज देवियों के द्वारा संवेद्य है, ब्रज गोपियों के द्वारा। प्रेम की इस दशा को महाभाव कहा गया। तो चैतन्य महाप्रभु इसको इस तरह से समझाते हैं, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। जैसे बीज इक्षु रस जुद्ध खंड सार शर्करा सीता मिश्री उत्तम मिश्री आर। जैसे सबसे पहले इक्षु होता है गन्ना, तो गन्ना का बीज होता है पहले, जैसे बीज, इसके बाद बीज के बाद गन्ना उत्पन्न होता है इक्षु, इसके बाद उसका रस पेर कर निकाला जाता है, रस के बाद गुड़ बनता है, गुड़ के बाद खांड बनता है, खांड के बाद शर्करा बनती है, शर्करा के बाद सीता चीनी बनती है, चीनी को सीता कहते हैं, और इसके बाद तो मिश्री, चीनी के बाद मिश्री, और मिश्री के बाद उत्तम मिश्री, उत्तम मिश्री। इस तरह से प्रेम है रिफाइन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रिफाइन नहीं हो रहा, रिफाइन का मतलब होता है कुछ उसे कचरा निकालना, वो तो दूसरा होगा, वो तो बिल्कुल शुद्ध है और वही गाढ़ होता जा रहा है, गाढ़ होता जा रहा है। तो पहले गन्ना के रूप में है प्रीति, तो गन्ना के रूप में मतलब साधन भक्ति कर रहे हैं, फिर रोपे उससे नहीं, पहले बीज, बीज से गन्ना, गन्ना से रस, रस से वही रस फिर गुड़, वही गुड़ फिर खांड, खांड के बाद शर्करा जो बुरा आदि बनता है, और इसके बाद फिर चीनी, चीनी के बाद मिश्री, मिश्री के बाद उत्तम मिश्री। तो इस तरह से अब यहां मिश्री स्थानीय भाव है और उत्तम मिश्री स्थानीय महाभाव, इस तरह से चालू हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बहुत क्लियर समझा रहे हैं, यही सर्व कृष्ण भक्ति रसर स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव, सात्विक व्यभिचारी भावे र मिलन कृष्ण भक्ति रस है अमृतास्वादन। तो बहुत टाइम हो गया लेकिन इसकी अगर व्याख्या न की जाए तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी है? है? अच्छा सटरडे है, ओ ठीक है। यही सब कृष्ण भक्ति रसेर अस्थाई भाव, स्थाई भावे मिले यदि विभाव अनुभाव, सात्विक व्यभिचारी भावे र मिलन है कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादन है। इस प्रकार से यही सब, ये सब स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, महाभाव को छोड़ करके भाव पर्यंत, यही सब कृष्ण भक्ति रसेर अस्थाई भाव। ये कृष्ण भक्ति रस के सब स्थाई भाव हृदय में कृष्ण भक्ति रस के अस्थाई भाव है। स्थाई भाव किसे कहते हैं, इसको यहां पर हम लिखे हैं और उसको बता रहे हैं। स्थाई भाव है ये सब भगवान के प्रति, इस तरह से राग अनुराग भाव या स्नेह मान प्रणय, ये सब अस्थाई भाव है। स्थाई भाव की परिभाषा रूप गोस्वामी जी देते हैं। अविरुद्धान विरुद्धांश्च भावान यो वस्तान नयन सुराजेव विराजित सस्थाई भाव उच्यते। स्थाई भावत्र सप्रप्त श्रीकृष्ण विषया रति, श्रीकृष्ण के प्रति जो रति है और क्रम वृद्धि से जो प्रेम आदि हो गया है, तो इस प्रेम को रति को स्थाई भाव कहा गया, कृष्ण से प्रेम होना अनुकूल भाव से। लेकिन इसको स्थाई भाव क्यों कहते हैं, अविरुद्धन विरुद्धांश भावन योग वस्तान नयन, विरुद्ध भाव या अविरुद्ध भाव सभी भावों को जो अपने वश में रखता है और एक राजा की तरह विराजमान रहता है, कभी हटता नहीं है, इस भाव को स्थाई भाव कहा जाता है। श्रीकृष्ण के प्रति कभी विरुद्ध भाव भी होता है अविरुद्ध भाव भी होता है, अनुकूल भाव और प्रतिकूल भाव। जैसे मान लीजिए राधा रानी मान कर गई, तो मान करने पर वो श्रीकृष्ण के प्रति अपशब्द का व्यवहार करती, लंपट कीतौ धूर्त कपटी इस तरह का शब्द का प्रयोग करती, इसको विरुद्ध भाव कहेंगे। विरुद्ध भाव है, विरुद्ध लग रहा है, वास्तव में विरुद्ध का अर्थ यहां बिल्कुल सांसारिक अर्थ में विरुद्ध नहीं है, वह प्रेम ही कभी कभी विरुद्ध भाव धारण करता है और कभी कभी अविरुद्ध अनुकूल भाव। तो चाहे अनुकूल भाव उत्पन्न हो छोटे छोटे या प्रतिकूल भाव, सभी प्रकार के भावों को जो अपने वश में रखता है, अर्थात वही वास्तविक भाव है, कभी बदलता नहीं है, उस भाव को स्थाई भाव कहते हैं। कृष्ण हमारे हैं, हमारे प्रियतम है, मैं कृष्ण के प्रिया हूं या मैं कृष्ण का भक्त हूं, कृष्ण मेरे हैं, इस प्रकार का कोई परिकर है और स्नेह बना हुआ है हृदय में, इस भाव को स्थाई भाव कहते हैं। लेकिन कभी कभी भाव दूसरे आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठहरते नहीं हैं, तो उनको व्यभिचारी भाव आदि कहा जाता है, व्यभिचारी या संचारी भाव उनको कहते हैं। आते उठते हैं, कभी मिट जाते हैं, कभी उठते हैं, कभी मिट जाते हैं, लेकिन अस्थाई भाव हमेशा अस्थिर रहता है। सुराजा युवा विराजित, एक सुंदर राजा की तरह, एक सफल राजा की तरह विराजता है, वही है स्थाई भाव। जितने भी स्नेह मान प्रणय है, जो श्रीकृष्ण के प्रति वति है, प्रेम है, वही है स्थाई भाव। चाहे वो भाव किसी भी तरह से अनुभावित हो, बाद में बताएंगे उसको। अच्छा विभाव कहे, यहां पर कहा गया है कि जब विभाव अनुभाव और सात्विक और संचारी व्यभिचारी भावों से युक्त होता है स्थाई भाव, तो और रस का उत्कर्ष होता है, तो भक्ति रस से बिल्कुल अमृत जैसा आस्वाद देता है। जब स्थाई भाव मिलता है किस किस से, विभाव से, अनुभाव से, सात्विक भाव से और व्यभिचारी भाव से जब मिलता है, तो और अधिक सुखमय हो जाता है। वे कहते हैं इसको, यही सब कृष्ण भक्ति रसर अस्थाई भाव, स्नेह मान प्रणय आदि ये सब अस्थाई भाव है। स्थाई भाव मिले यदि विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी भावे र मिलने कृष्ण भक्ति रस है अमृत स्वादन। स्थाई भाव में जब विभाव मिलता है, अनुभाव मिलता है, सात्विक भाव मिलता है, व्यभिचारी भाव मिलता है, तो चारों की परिभाषा क्या रूप गोस्वामी पाद जी दिए हैं यहां बता रहे हैं। विभाव विभाव व्यंते हिरत्यादि जत्र जैन विभाव देते विभाव नाम सब वेद्य आलंबनो दीपनात्मक। विभाव विभाव का अर्थ है जो रति आदि को, रति भाव प्रेम स्नेह और स्नेह के बाद क्या था मान प्रणय राग अनुराग ये स्थाई भाव हैं। इन इन भावों को, इस रति को जो विविध प्रकार से कर दे, अनेक प्रकार से कर दे, उसको विभाव कहते हैं। अनेक प्रकार से कर देता है वही प्रेम, जैसे मान लीजिए माँ यशोदा का प्रेम है भगवान के प्रति, रति है, लेकिन कभी कभी वो रति धारण करता है, वो विविध कर देता है। श्री कृष्ण को कभी कभी डंडा लेकर के धमकाती है, कभी उखल में बांध देती है, कभी कुछ करती है। तो राधा माँ यशोदा के भाव को जो विविध करता है, विविध करता है विभाव व्यंत, वो भाव भगवान का प्रेम विविध तरह से होता है। और जैसे वही प्रेम है, वही रति है, लेकिन राधा रानी में दूसरे प्रकार से है, सखाओं में दूसरे प्रकार से है, शांत रति भक्त में दूसरे प्रकार से, दास्य रति भक्त में दूसरे प्रकार से है। हाँ, एक ही चीज वास्तव में हलादनी शक्ति को वृत्ति है प्रेम और भाव कृष्ण के प्रति, कृष्ण हमारे हैं ये हैं, लेकिन जो भाव उसको विविध प्रकार से कर दे, एक ही भाव को आश्रय भेद से और विषय भेद से भिन्न भिन्न कर दे, उसको विभाव कहते। तो दो प्रकार का होता है विभाव, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव भी दो प्रकार का होता है, विषयालंबन और आश्रयालंबन। यहां पर लिख रहे आलंबन विभाव के बारे में, आलंबन का अर्थ होता है यह प्रेम, इस प्रेम के जो आलंबन है, अवलंबन है, आधार है, तो दो आधार होते हैं। एक तो यह प्रेम जिस पर जाकर के टिकता है, जैसे कल्प वृक्ष कहा गया कि यह लता जाकर के कृष्ण पर चढ़ती है और रहती है कहां, टिकी है कहां, भक्त के हृदय में। तो भक्त जो है वो आश्रय आलंबन है इस प्रेम का, और भगवान श्री कृष्ण विषयालंबन है, उनके लिए प्रेम किया जाता है। और यह प्रेम रहता है किसके हृदय में, भगवान के हृदय में, भक्त के हृदय में। और कभी कभी वह प्रेम विनिमय भी होता है, भगवान आश्रय आलंबन हो जाते हैं और भक्त से प्रेम करते हैं, तो भक्त विषय होता है उस समय। लेकिन जनरली जो भक्त है वो आश्रय आलंबन है और भगवान श्री कृष्ण विषय आलंबन है। कृष्णस्तु कृष्ण भक्तास्तु बुधय आसनामता। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि विद्वान लोग बताते हैं कृष्ण और कृष्ण के भक्त इस भक्ति के आसन हैं। रत्यादिर विषयत्वेन तदाधार तयाति च, कोई विषय है और कोई आधार है, आश्रय है। जैसे कोई लता जमीन पर थाला पर रुकती है, वहां टिकी रहती, वहां से बढ़ती है, वैसे भक्त का जो हृदय है वही इस प्रेम का आधार है, आश्रय है, इसलिए उसको आश्रय आलंबन कहते हैं। और उस प्रेम के विषय होते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए उनको विषयालंबन कहा गया है। ये विभाव दो प्रकार का होता है, विषयालंबन नहीं, दो प्रकार का था, उद्दीपन और आलंबन। तो आलंबन दो प्रकार का हुआ, विषयालंबन और आश्रयालंबन। दोनों पर टिकी है ना वो लता, एक थाला में जमी है और दूसरे वृक्ष पर पकड़ करके वो टिकी हुई है। तो कृष्ण के प्रति प्रेम करता है भक्त और प्रेम रहता है भक्त के हृदय में, तो कृष्ण विषयालंबन है और भक्त आश्रयालंबन है। कभी कभी कृष्ण विषयालंबन भी हो जाते हैं, जैसे राधा रानी या गोपीजनों के प्रति जो उनका प्रेम है, अपनी शिखाओं के प्रति प्रेम है, जो भगवान के हृदय में प्रेम है तो उस समय वो आश्रयालंबन हो जाते हैं और भक्त या गोपीजन विषयालंबन हो जाते हैं। पर सामान्यतः कृष्ण ही विषयालंबन रहते हैं। और उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं, उद्दीपनास्तुते प्रोक्ता भावम उद्दीपयन्ति, ये जो भाव को उद्दीप्त करे, बढ़ा दे प्रेम को, उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन से भी प्रेम बहुत विविध प्रकार का होता रहता है, बढ़ता है। ये तो श्रीकृष्ण देवस्य गुणश्चेष्टा प्रसाद में उद्दीपन क्या है, श्रीकृष्ण के गुण ये उद्दीपन है, विविध प्रकार के गुण, उनका सौंदर्य, उनका मुस्कुराना आदि ये आगे आ रहा है। चेष्टा कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं और कृष्ण के प्रसाधनम वेशभूषा, ये उद्दीपन है भक्तों के प्रेम के। कृष्ण की वेशभूषा देख करके, उनकी विविध लीला देख करके और उनके गुण सुन करके या देख करके भक्तों के भाव विविध होते रहते हैं। तो उसमें मुख्य है उद्दीपन विभाव स्मित, कृष्ण की मुस्कान, ये भाव को उद्दीप्त करते हैं और बढ़ाते हैं। अपांग तिरछी चितवन से देखना, मुस्कुराना देखना और अंग सौरभ और शरीर का सुगंध, हाथ का, आंख का, मुख का सुगंध, श्रृंग और सिंह धारण करना, वो गोचारण में सिंह हो जाते हैं, नूपुर मतलब वंश, बांसुरी, बांसुरी इस भाव को बढ़ा देती है, बांसुरी का वादन सुन करके या बांसुरी बजाते हुए देख करके कृष्ण के प्रति भाव विविध प्रकार का होता रहता है। जैसे बांसुरी को गाली देना, यद्यपि बांसुरी को गाली देना वो प्रेम समुद्र की ही तरंग है, ऐसा नहीं कि सचमुच के बांसुरी से सौतिया डा हो गया है और कोर्ट केस चल दिया, ऐसा नहीं है, वह प्रेम ही इस प्रकार से विविध होता रहता है। बांसुरी सुनकर और श्रृंग ध्वनि, नूपुर, शंख, पदांक, भगवान के चरण चिन्ह को देख करके भाव अद्भुत बढ़ता रहता है, उसको उद्दीपन विभाव का। शंख तुलसी, तुलसी जी को देख करके भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, विविध होता रहता है। भक्त और भगवान श्री कृष्ण के भक्त को देख करके भी भाव बढ़ता है, उसको विभाव कहते हैं, भक्त का दर्शन। या किसी भक्त के विषय में सुन रहे हैं, गोपीजनों के विषय में, उद्धव जी के विषय में, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज आदि के विषय में, तो भगवान के प्रति भाव विविध होता है, मतलब उद्दीप्त होता है। और तद वासरादय और श्रीकृष्ण के पर्व या दिन, जैसे एकादशी, एकादशी, जन्माष्टमी, वामन पूर्णिमा, नृसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, ये सब भगवान के दिन होते हैं। ऐसे विविध प्रकार से भगवान के दिन होते हैं, तत्क्षेत्र और उनके क्षेत्र वृंदावन आदि, इनका दर्शन करने से, इनके बारे में सुनने से भाव उद्दीप्त होते रहते हैं, तो इसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो विभाव दो प्रकार के, दो वर्गीकरण हुए, एक उद्दीपन विभाव और दूसरा आलंबन विभाव। जैसा आलंबन रहेगा भक्त में, अगर भेद है, एक भक्त दूसरे प्रकार का है, कोई वात्सल्य भाव का भक्त है, कोई सख्य भाव का है, कोई शांति रति में है, कोई मधुरा रति में है, तो उन भक्तों के वो आश्रय आलंबन के भेद के कारण भक्ति में भेद होता जाएगा, भाव में भेद होता जाएगा। और विषयालंबन भी भगवान के पास यद्यपि वो एक ही है, लेकिन फिर भी सखाओं के पास वे दूसरे तरह से हैं, माँ यशोदा के पास दूसरे तरह से हैं, और श्री किशोर जी के पास दूसरे तरह से है, गोपियों के पास दूसरे तरह से है, तो विषय लंबन भी विविध है, इसीलिए ये भाव रति आदि ये विविध होता रहता है। तो आलम इसको विभाव कहते हैं, विषय लंबन, आश्रय लंबन और उद्दीपन। तो जब इस रति आदि के साथ प्रेम के साथ विभाव मिलता है तब प्रेम और अमृतमय हो जाता है और इसका स्वाद बढ़ जाता है, ये भगवान यहां पर बता रहे हैं। और सात्विक व्यभिचारित, ये तो विभाव हुआ, और अनुभव चार चीज मिलते हैं, स्नेह मान प्रणय आदि में चार चीज, विभाव अनुभव सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव, जब चारों मिलते हैं तो विविध प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है, भक्ति रस और स्वादिष्ट होता है, अमृत आस्वादन है, अमृत हो जाता है। तो विभाव के बारे में सुने, अनुभाव के बारे में सुने, अनुभाव किसे कहते, अनुभावास्तु चित्तस्थ भावानां अवबोधका ते बहिर्विक्रिया प्रोक्ता उद्भास्वरा। अनुभाव कहते हैं चित्तस्थ भावों का जब प्रकाशन होता है शरीर में तो इसको अनुभाव कहा गया है। क्रियाएं, चित्त में जो भाव उमड़ा हुआ है उस भाव को जो बाहर शरीर में बाहर बोधित करें उनको अनुभाव कहते हैं। जैसे ये वही विक्रिया है, नृत्यम विलुठितम, 13 गिना रहे हैं, नृत्य भीतर भाव उत्पन्न होता है तो कभी कभी भाव का प्रकाशन होता है, भक्त नाचने लगता है, नृत्य बिलुठी तब कभी गड़ा गड़ी जाता है, कभी लौटने लगता है प्रेम में, गीतम कभी भगवान के बारे में गाने लगता है मधुर स्वर से, क्रोशनम कभी उच्च स्वर से चित्कार करता है, बुलाता है भगवान को, जोर से रोता है, गाता है। अच्छा, तनमोटनम शरीर को मोड़ता है, शरीर में ऐंठन आती है, तनुमोटनम का एक अर्थ है, शरीर को मोड़ता है, हुंकारो कभी हुंकार करता है, भगवान को पुकारता है जोर से, जृंभणम कभी जम्हाई लेता है, श्वास भूमा उसकी सांस तेज हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी सांस चलने लगती है, यह दीर्घ निश्वास, लोक अनपेक्षिता और लोगों की परवाह कभी कभी उसे नहीं होती है, पूरा बाजार भरा पड़ा है या समाज है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम में वो ऐसी चेष्टा करता है जो लोक की अपेक्षा नहीं रखता, लोग कुछ भी कहे। और लाला श्राव, मुख से गाज निकलना, और अट्ठहास कभी जोर से हंसना, घूरना कभी घुमरी चढ़ जाती है, उसे घूमने लगता है, घूरना, और कभी कभी हुक्का हिचकी आने लगती है भक्त, तो इसको अनुभाव कहते हैं। तो जब विभाव अनुभाव ये सब मिलते हैं अस्थाई भाव के साथ, प्रेम के साथ भाव में, से रति भाव प्रेम स्नेह मान प्रणय आदि में जब मिलते हैं तो भक्ति रस अद्भुत आस्वादन का विषय हो जाता है, अद्भुत रस उसका होता है। इन सब भाव मिला तो भाव में उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव, और अनुभाव में ये 13 हुए। अब स्थाई सात्विक भाव बता रहे हैं, आपने सुना होगा अष्ट सात्विक विकार, उसको सात्विक भाव कहते हैं। कृष्ण संबंध भी साक्षात किंचित वा व्यवधानतः भाव चित्त विहाक्रांतम सत्वमित्युच्यते बुधे। विद्वान लोग कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद जी हमेशा ऐसा कहते गए हैं, विद्वानों का ऐसा मत है, ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि मेरा मत है, विद्वानों का ऐसा मत है, विद्वान मतलब भक्ति योग के जो अभिज्ञ हैं, उनका ऐसा मत है कि साक्षात कृष्ण को देख करके या कृष्ण को सुन करके कृष्ण के कारण, अथवा किंचित वा व्यवधान होता अथवा परंपरा से कृष्ण के विषय में सुन करके या अनुभव करके या देख करके कृष्ण संबंधी जो भाव चित्त को आक्रांत कर देते हैं, चित्त आक्रांत होता है, चित्त हमेशा पिघला रहता है, चित्त आक्रांत हो जाता है उन भावों से, हमेशा उसको दबाए रहते हैं, तो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भावों से जब चित्त हमेशा आक्रांत रहता है तो इस चित्त को सत्व कहा जाता है, प्रेममय हृदय, आक्रांत चित्त, विविध भाव उत्पन्न होते रहते हैं, इसको सत्व कहते हैं। और सत्वाद अस्मात् समुत्पन्ना, ये भावास्ते सात्विक, और ऐसे कृष्ण प्रेम आक्रांत चित्त में जो भाव उत्पन्न होते रहते हैं, जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं शरीर आदि में, इसको सात्विक भाव कहते हैं। ऐसे हृदय के कारण ये सब उत्पन्न होते हैं, प्रेम के कारण, उनको सात्विक भाव कहते हैं। वे आठ होते हैं, ते स्तंभ स्वेद रोमांचा स्वर भेदोत्थ वे पथ वैवर्ण्यम अश्रु प्रलय इत्यष्टो सात्विका स्मृता। ये अष्ट सात्विक भाव है, शरीर में पसीना छूटना है, कृष्ण प्रेम के कारण होता है। हृदय में कोई भाव आक्रांत है, हृदय को दबा रहा है, उसमें हट नहीं रहा है, तो मन में कृष्ण के कुछ याद करके प्रेम विकसित हो रहा है, आक्रांत चित है, तो उसके कारण पसीना छूटता है शरीर में। स्वेद, पहले स्तंभ, स्तंभ एक विकार है, चुपचाप जड़, जड़ता आ जाना, कुछ भी न करना न बोलना, बिल्कुल जड़ हो जाना, हृदय के उस भाव के कारण होता है। और स्वेद, पसीना छूटता है, रोमांच, रोए खड़े हो जाते हैं, स्वर भेद, वाणी विकृत हो जाती है, वाणी साफ साफ नहीं बोल पाता आदमी, जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को ज ज ग ग बोलते थे कभी कभी, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता था, वाणी बदल जाती है, स्वर भेद, बेपथ, शरीर में कपकपी होने लगती है, वैवर्ण, चेहरे का रंग बिल्कुल फीका हो जाता है, उड़ जाता है, तो वैवर्ण कहते हैं, शरीर का रंग ही दूसरा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, अश्रु, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, प्रलय, मूर्छित हो जाता है भाव। तो ये मूर्छा स्तंभ से लेकर के प्रलय पर्यंत, मूर्छा पर्यंत अष्ट सात्विक विकार है। तो ये जब अष्ट सात्विक विकार मिलते हैं इसके साथ साथ, तो और आस्वादन होता है भक्ति का, ये अष्ट सात्विक विकार, ये शरीर पर ये सब उत्पन्न होते हैं, इनको अष्ट सात्विक विकार कहते हैं, परंतु भाव कुछ अलग है चीज, सत्व है, प्रेमाक्रांत चित्त को सत्व कहते हैं, और सत्व के कारण ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको सात्विक विकार कहते हैं। यह सात्विक का अर्थ इन द मोड ऑफ गुडनेस नहीं हुआ है, ये तो ऑलरेडी प्रकृति से पार दिव्य सत्व की बात हो रही है। सत्व का अर्थ ही है भगवान कृष्ण के प्रेम से आक्रांत मन चित्त, और उसके कारण कुछ सोच सोच करके भाव के कारण कभी वैवर्ण, कभी स्तंभ, कभी अश्रु, कभी पुलक, कभी कुछ ऐसे होता है, तो अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। व्यभिचारी भाव, तो तीन तो हो गया, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी का अर्थ होता है जो एक रस न रहे, कभी उठे, कभी तिरोहित हो जाए, कभी बड़े रूप में हो, छोटे रूप में हो, उसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। और एक इसके लिए दूसरा शब्द सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद जी दे रहे हैं, संचारी भाव। संचारी का अर्थ है जो संचरण करते रहते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कहां संचरण करते हैं, स्थाई भाव के ही सम्मुख विचरण करते हैं। स्थाई भाव क्या, स्थाई भाव मतलब रति, भाव, प्रेम, स्नेह, अनुराग, प्रणय आदि सब, महाप्रेम जो भगवान के प्रति है, ममता तिशा है, उसको स्थाई भाव कहते हैं। तो उस स्थाई भाव के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, दूसरी जगह नहीं उत्पन्न होते हैं। अगर वह प्रेम एक समुद्र के समान है तो ये व्यभिचारी भाव तरंगे हैं, लहर हैं, हिलोरे हैं, उसमें उठते रहते हैं, मिटते रहते हैं, और स्थायी भाव तो लबालब जैसे समुद्र भरा पड़ा है, वैसे भगवान के प्रति बिल्कुल आसक्ति प्रेम तो स्थायी भाव है। तो उस स्थायी भाव के पास ही ये सब घूमते रहते हैं, उठते रहते हैं। ये 33 है, इसको भक्ति के समय सिंह में गिनाया गया। विशेषणाभिमुख्य न चरंती स्थायिनम प्रति अथोच्यते त्रयस्त्रिंशत् भावा ये व्यभिचारिण। वाक अंग सत्व सुच्याय गेयास्ते व्यभिचारिण। विशेषण विशेष रूप से अर्थात कभी समय विशेष पर परिस्थिति विशेष में स्थायिनम प्रति अभिमुख्य न चरंती, स्थायी भाव प्रेम के प्रति जो स्थायी विचरण करते रहते उसी के आसपास, तो इनको विद्वानों ने 33 बताया है। ये व्यभिचारी भाव है और इनका प्रकाशन अंग वाग वाणी द्वारा और अंग द्वारा नेत्र या भौं आदि के विकृति द्वारा, वाणी द्वारा और सत्व सुच्या और हृदय द्वारा भावाक्रांत चित्त द्वारा इनकी सूचना मिलती है। व्यभिचारी भाव का पता चलता है कि इसमें कौन भाव उदित हुआ है कौन नहीं उदित हुआ। संचारयन्ति भावस्य गतिम संचारिणोऽपि ते, अथवा ये भाव की गति को, भाव की स्थिति को, प्रेम को ये संचारित करते रहते हैं। संचारयन्ति हिलाते रहते हैं, उसको तरंगायित करते रहते हैं। प्रेम एक गंभीर समुद्र की तरह है, लेकिन उसमें जब ये तरंगे पैदा करते हैं, उछालन पैदा करते हैं, उसी के साथ रहते हैं, तो इसलिए इनको संचारी भी कहा जाता है। उन्मज्जंती निमज्जंती, कभी कभी ये उसी प्रेम समुद्र में डूब जाते हैं, कभी उठते हैं, कभी लहर के रूप में होते हैं, कभी भंवर के रूप में होते हैं। तो उन्मज्जंती, उन्मज्जंती का अर्थ कभी प्रकट हो जाते हैं, और निमज्जंती कभी उसी भाव समुद्र में प्रेम में डूब जाते हैं। स्थायिनी अमृतम बार अमृत बारिध, उस स्थायी भाव के प्रेम समुद्र के वारिधि में, प्रेम के अमृत समुद्र में कभी ये उठते हैं, कभी डूब जाते हैं, कभी बिल्कुल अस्थायी भाव की तरह ही हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसीलिए विद्वान लोग इनको व्यभिचारी भाव कहते हैं। उर्मिवत वर्धयन्ति एवं यान्ति तद्रूपतां चते, उर्मियों की तरह ये प्रेम समुद्र की उर्मियों की तरह हैं, कभी प्रेम समुद्र को बढ़ाते हैं, कभी तद्रूपतां चते, कभी अस्थायी भाव की तरह ही हो जाते हैं। तो ये 33 है गिना रहे निर्वेद। ये सबका उदाहरण रूप गोस्वामी पाद जी देते गए हैं। निर्वेद किसको कहा, निर्वेद का अर्थ है कृष्ण से वैराग्य। प्रेम समुद्र ही तरंगायित हो रहा है, निर्वेद बहुत दुख पाया कृष्ण से प्रेम करके। जो मैं ऐसो जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिढोड़ा पीटती प्रेम न की जाए कोई, निर्वेद होता है। बहुत दुख पाया कृष्ण से प्रेम करके। और जैसे घर गृहस्थी में कोई कभी दुखी होकर के सोचे कि बेकार फंसा हुआ हूं, इसको निर्वेद कहते हैं। ये काम किया फंस गया, तो ऐसे ही कभी कभी अनुभव होता है तो बुरी तरह से फंस गया कृष्ण के साथ। पहले जानता कि ऐसा सब करना पड़ेगा तो कृष्ण की भक्त ही नहीं बना होता। निर्वेद, यद्यपि प्रेम ही इस तरह से तरंगायित हो रहा है, ये सब समय नहीं रहता है निर्वेद। गोपियां भी कभी कभी आपस में कहती हैं कि बहुत बुरा हुआ जो कृष्ण से प्रेम किया, अच्छा नहीं किया। कृष्ण के लिए राधा रानी कहती है कि वो देखो कृष्ण कितने निर्मोही हैं, रात कैनु दिवस दिवस कैनु रात, मैं कृष्ण के लिए रात को दिन समझू, आधी रात को भी बांसुरी बजी तो उनके पास गई, रात को मैं दिन समझी और दिन में घर में चित करके रही, रात समझी उसको, लोक लाज से मैं कहीं निकली नहीं, हमारी ऐसी बदनामी हो गई इसलिए मैं घर में चित कर रहती, तो रात को दिन बनाया, दिन को रात बनाया कृष्ण के लिए, अथवा दिन में तो उनसे मिली ही, रात में भी मिली, दिन को रात बनाया, रात को दिन बना दिया, कोई परवाह नहीं की, लेकिन वे ऐसे निर्मोही निकले, सब छोड़ करके चले गए, बहुत गड़बड़ हुआ है। इस तरह से कहती है अब उनसे प्रेम नहीं करूंगी, इसको निर्वेद कहा जाता है। यदि प्रेम ही इस रूप को धारण, इस भाव में आया है, तो निर्वेद अथ विषाद का थोड़ा सा अर्थ यह हुआ, निर्वेद का अर्थ है यह है कि अब नहीं करेंगे कृष्ण से प्रेम, उब गए, यह अर्थ हुआ। और विषाद का अर्थ है दुख का अनुभव करना, कृष्ण प्रेम के कारण दुख, विषाद, दैन्य, कभी कभी दीनता आती है, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणाया में सखे दर्श्य समी। राधा रानी कभी कभी कहती हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, मैं तो आपकी दासी हूं, आप तो महान है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हुआ, ये हुआ है, मैं आपके कंधे पर चढ़ना चाहती थी, बहुत अपराध, तो दैन उत्पन्न होता है। तो इस दैन में और निर्वेद में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं, लेकिन ये भाव समुद्र की तरंग है, विविध तरह से ग्लानी उत्पन्न होती है। निर्वेद और ग्लानी लगभग मिलते जुलते हैं। ग्लानी का अर्थ है पश्चाताप, इच्छा नहीं किया। कृष्ण के प्रेम के संबंध में ही ग्लानी, श्रम, परिश्रम होना, मेहनत का अनुभव होना, परिश्रम आ जाना, थकावट आ जाना, मद गर्व, मद होना कभी कभी, ओहो मैं कितनी भाग्यवती हूं, कितना भाग्यशाली हूं, कृष्ण हमारे प्रियतम है, प्रभु है, इसका गर्व होना। और कभी कभी गर्व और मद का अर्थ इतना ही है, मद का अर्थ है अपने सामने किसी को नहीं समझना, भूल जाना, मैं बिल्कुल मस्त हूं कृष्ण प्रेम में, जिसको मद कहते हैं। और गर्व का अर्थ है दिखाना, मैं कितना भाग्यशाली हूं, कृष्ण की प्रिया हूं या कृष्ण का प्रेमी हूं, कृष्ण के प्रेम के चलते गर्व, तो वह प्रेम समुद्र ही इस तरह का रूप धारण करता है। और शंका, कृष्ण पर शंका, कृष्ण के प्रति शंका हो जाए कि प्रेम निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, ऐसे वैसे कई प्रकार के। और त्रास, भय, कभी कभी कृष्ण पर संकट आता है तो त्रास होता है, भय होता है, जैसे काली के चंगुल में फंस गए तो त्रास हुआ ब्रजवासियों में, तो वह कृष्ण का जो प्रेम है वो त्रास का रूप धारण कर रहा है, भय हो रहा है, अथवा कृष्ण से भी डायरेक्ट भय का रूप धारण कर त्रास होता है, कृष्ण त्रास, आवेग, आवेग का तो इंद्रियों में चंचलता हो जाना, कुछ बड़बड़ा करके बोलना, हाथ से कुछ करना, देखना इधर उधर, इसको आवेग कहते हैं। मन का ही आवेग और उन्माद, उन्माद का अर्थ कुछ बकवास करना, अपस्मृति, मृगी, भूल जाना कुछ, तथा व्याधि, चिंता में होना, ये कृष्ण प्रीति के कारण शरीर में कोई विकार होता है उसको व्याधि कहते हैं, मोहम, अज्ञान, भ्रम, कुछ याद न रहना, स्मृति, कभी स्मृति आ जाना, ठीक स्मृति आओ, ये चीज ऐसे ऐसे, चलो प्रिय तुम वन से लौट रहे हैं, कदम के तट पर चलना है, जमुना जी के तट पर चलना है, चलो इसको स्मृति कहते हैं। तो कभी स्मृति, कभी मोह है, कभी आलस्य, कृष्ण प्रीति के कारण जाड्य, जड़ता, व्रीड़ा, लज्जा, अवहित्था, अवहित्था को भी लज्जा ही कहते नहीं, थोड़ा सा अंतर है। अवहित्था का अर्थ का संकोच और लज्जा, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, मति का अर्थ कभी निश्चय कर लेना है, धृति, धैर्य, हर्ष, उग्रता, अमर्ष, असूया, कृष्ण के गुणों में दोष निकालना है, चापल्यम, चपलता, कोई एक बात पर नहीं रहना, निद्रा, सुप्ति और बोध, ये 33वें, सो जाना या जगना, कृष्ण प्रेम के काम, इति ये भाव व्यभिचारिण्य समाख्यात, विद्वान लोग इन भावों को व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो ये भाव विभाव अनुभाव, नहीं, विभाव अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव जब इन सबके साथ मिलते हैं, किसके साथ, प्रेम, स्नेह और राग, अनुराग, भाव, प्रणय, मान आदि के साथ जब मिलते हैं चारों भाव, तो यह भक्ति का रस अमृत आस्वादन है, अमृत से भी महाआस्वादमय बन जाता है। ये इसका उदाहरण देते हैं, जैसे दधि सीता घृत मरीच कर्पूरे, मिलने रसाला है अमृत मधुर। जैसे दही है, बिल्कुल सजाव दही जिसमें कोई भी खट्टापन आदि नहीं है, शुद्ध दही है और सजाव दही, दूध औंट करके उबाल करके दही बनाया जाता है, और सजाव दही का अर्थ है जिस पर मलाई मोटा जमा हुआ है, ताजा ताजा, उसको फोड़ा नहीं गया है, अभी हटाया नहीं है, उसको सजाव दही कहते हैं। तो ऐसे दही को मलाई सहित आप फेटिए, बिना पानी डाले उसको मिलाइए, और उस दही में काम भर सीता डालिए, चीनी या मिश्री, मिश्री का चूर उसमें, और घृत और मरीच, काली मिर्च भी थोड़ा, और कर्पूर, कर्पूर एक लता होती है उसका, तो मिलने रसाला है अमृत मधुर। तो इस प्रकार का दही अपने आप में ही परम मधुर है, अपने आप में ही, लेकिन अगर उसमें सीता, घृत, मरीच और कर्पूर मिला दिया जाए तो मिलने रसाला हो, परम रसमय दही बन जाता है। इसी तरह से कृष्ण भाव, कृष्ण प्रेम अपने आप में परम मधुर तो है ही, लेकिन जब उसमें ये विभाव अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव मिलते हैं तो अमृत मधुर, बहुत सुंदर हो जाता है, आस्वाद हो जाता है। भक्त भेदे रति भेद, पंच प्रकार, शांत रति, दास रति, सख्य रति, आर वात्सल्य रति, मधुर रति, ये पंच विभेद, रति भेदे कृष्ण भक्ति, रसे पंच भेद, भक्त भेदे रति भेद पंच प्रकार। ये रति भेद भी जो शुरू में किया कहा गया, जो आगे चलकर के प्रेम बनता है, और प्रेम के बाद जो स्नेह भाव अनुराग आदि बनता है, राग अनुराग, तो यह रति भी भक्त भेद से पांच प्रकार की होती है। भगवान के प्रति किया हुआ प्रेम पांच प्रकार का होता है। क्यों पांच प्रकार का होता है? भक्त भेद, क्योंकि भक्त में भेद होता है, इसीलिए इस भाव में, प्रेम में भी भेद होता है, तो ये पांच प्रकार का होता है। रति भेदे नहीं, भक्त भेदे रति भेद पंच प्रकार, भक्त भेद से रति भेद पांच प्रकार का होता है। क्या क्या पांच प्रकार है? शांत रति, दास्य रति, सख्य रति आर, वात्सल्य रति, मधुर रति, ये पंच विभेद। और रति भेदे कृष्ण भक्ति, रसे पंच भेद। और पांच प्रकार की रति है, मतलब प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए पांच प्रकार का आनंद भी होता है, रस भी। दास्य रति शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और मधुर रति। तो रति में चूंकि भेद है, पांच प्रकार के भक्त हुए तो पांच प्रकार के रति हुई, तो पांच प्रकार का आनंद भी मिलता है। वही रस एक रस है लेकिन पांच प्रकार से उसका आस्वादन होता है। तो उसको शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस कहते हैं। रति में और रस में अंतर है। रति का अर्थ है कृष्ण के प्रति प्रेम, आसक्ति, परंतु उस रति के कारण, उस भाव के कारण और ये विविध अनुभव आदि मिलने के कारण जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, दिव्य आनंद मिलता है भक्त को, उसको रस कहा गया है। तो कौन कौन है, अच्छा इसके इनका क्या स्वरूप है, इसको भी यहां बताया गया है। तो बंद करें कि चलें दें ठीक है, कॉल अब कहेंगे कि शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और मधुरा रति, ये पांच प्रकार के भक्त हैं। पांच डिवीजन बटे हैं, कोई शांत रति के भक्त है, कोई दास्य भाव के हैं, शांत भाव, दास्य भाव और सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। भाव अलग अलग है भक्तों में, भक्त अलग अलग हैं इस प्रकार के। तो उनमें पांच प्रकार के भाव हैं, तो पांच प्रकार की आसक्ति रति हुई और रति के कारण, प्रेम के कारण पांच प्रकार के रस का आस्वादन करते हैं। सखा दूसरे रस का आस्वादन करते हैं, उसी भक्ति का एक चीज है। एक चीज का मतलब जैसे दही एक ही है लेकिन इन वस्तुओं को मिलाने से उसका रस बढ़ता जाता है, तो उसको भी कई प्रकार से आस्वादन कर सकते हैं, कई चीज डाल डाल करके। जैसे आश्रय भेद, आश्रय में आलंबन भेद, विषयालंबन का भेद, फिर उद्दीपन, फिर सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, ये पांच प्रकार के भक्त है। तो पांच प्रकार के रस का आस्वादन करते हैं। रति अलग चीज है, रस अलग चीज है, समझना चाहिए। परंतु कभी कभी भक्त लोग प्रवचन में ऐसे ही कह देते हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। रति शब्द के लिए भाव शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी को कहते हैं शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और मधुर रति। और इन पांच महान रसों के द्वारा, इन भावों के द्वारा जब भक्त को सुख मिलता है तो उसको रस कहा जाता है। शांत रस, दास्य रस, रस मतलब आनंद, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। इन पांच रति का क्या अर्थ है, श्री रूप गोस्वामी पाद जी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार इन पांचों का डिफिनेशन दिए हैं, जिसे कल कहा जाएगा। हरे कृष्ण।